कल्प विमल
निर्मल हो जीवन
अपना हो संकल्प विमल
खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे
आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे
स्वामी भाई जी टोटल क्वालिटी पर्सनालिटी आज का विषय है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैलिकट यूनिवर्सिटी के द्वारा बीटेक डिग्री प्राप्त की है। मुंबई यूनिवर्सिटी में 7 वर्ष इंजीनियरिंग फैकल्टी में आपने कार्य किया है। कॉरपोरेट ट्रेनिंग में 10 वर्ष कार्य किया है। पिछले 12 वर्ष से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, नियमित विद्यार्थी भी है और अपनी वैल्यूबल सेवाएं अनेकानेक आत्माओं को आपने प्रदान की है। आपने अनेकानेक कंपनीज और संस्थाओं में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कराए हैं। आपके मुख्य विषय जो है मेमोरी मैनेजमेंट वर्ल्ड ऑफ स्माइल डाइल्यूटिंग स्ट्रेस जर्नी विथ हार्मनी लिविंग लाइफ लविंगली माइंड मैनेजमेंट ये आपके प्रमुख विषय रहे हुए हैं। आपने जो व्याख्यान दिए हुए हैं अनेकानेक टीवी चैनल्स पर समय प्रति समय जी जागरण आस्था और संस्कार चैनल्स पर आते रहते हैं। आप कई संस्था और इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं जैसे बॉम्बे में केम हॉस्पिटल जेजे हॉस्पिटल इंडियन एयरफोर्स हिंदुजा हॉस्पिटल आदि कई स्थानों पर आपने सेवाएं दी है। कहते हैं कि सूर्य महाराज अस्त होने जा रहे थे लेकिन बहुत उदास हो गए दुखी हो गए कि मैं अपना प्रकाश फैलाने का जो वर्षा है जिम्मेवारी वो किसको दूं। उतने में से कहीं कोने से एक आवाज आती है छोटा सा दीप टिमटिमाता है और बोलता है आप निश्चिंत होकर दूसरे स्थान पर अपनी जिम्मेवारी निभाने जा सकते हैं क्योंकि आपका प्रकाश फैलाने की जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी है। और इसीलिए कहते हैं चलने दो आंधियों को आने दो तूफानों को तुम छोटे से दीप ही सही तुम नन्हे से दीप ही सही पर तुम में भी आकाश समान अनंतता है और सूर्य समान प्रकाश है। ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आज हमारे पास आए हैं। आप इनकी बाह्य पर्सनालिटी पर नहीं जाना लेकिन इनका मनोबल इतना सशक्त है। आपका मन सचमुच एक मान सरोवर बैठे है ज्ञान सरोवर में और ऐसे व्यक्तित्व के सामने बैठे हैं जिनका मन मान सरोवर है। मनमोहक मस्ती भरा व्यक्तित्व सिर्फ वर्णन से ही नहीं परंतु सुनकर अनुभव करेंगे। हमने ये अनुभव किया है कि आपके मन में अनेकानेक विषयों के ज्ञान रत्न समाये हुए है। आप ईश्वर पिता के वो सिलेक्टेड कोहिनूर हीरे है जिन्होंने अपने वाणी का जादू हम कहते हैं कि आंखों का धोखा और एक है वाणी का जादू तो आपने अपने वाणी का जादू अनेकानेक दिल पर लगाया है जो एक बार सुनने के बाद बार बार सुनना चाहते हैं यही आपका परिचय है। तो समय अधिक न लेते हुए हम सुनेंगे स्वामी भाई जी को।
ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्कार आप सभी भाई बहनों का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज का जो विषय है वो है संपूर्ण व्यक्तित्व। इसको अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो कहेंगे TQP टोटल क्वालिटी पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा में अब साथ में चलेंगे और जो विषय में जो 3 कीवर्ड्स हैं देयर आर 3 कीवर्ड्स हियर दैट इज टोटल क्वालिटी पर्सनालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है क्वालिटी। पर्सनालिटी तो सभी के होते हैं लेकिन आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी पर्सनालिटी हम कैसे बने। एक सिंपल प्रश्न के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत सारे देशों में एक ऐसा देश है विच इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स क्वालिटी कॉन्शियसनेस। कौन सा देश है? माई गॉड, परफेक्टली राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, है ना। जापान है तो हम जापान के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जापानीज टूरिस्ट केम टू इंडिया फॉर साइट सीइंग। सारा भारत देखने के बाद ऑन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी ही केम टू मुंबई फॉर मुंबई दर्शन। सारा मुंबई देखा, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय द स्टैमिना ऑफ मुंबई पीपल, विशेष तौर पर विथ रिस्पेक्ट टू लोकल ट्रेन। आप में से कितने भाई बहने बॉम्बे से आए हैं, हाथ उठाए। ओ माई गॉड, सभी बॉम्बे से आए, वेरी गुड। अपने लिए तालियां बजाइए थोड़ा, आपकी स्टैमिना कहां तक पहुंची है। तो जापानीज टूरिस्ट जो था, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द स्टैमिना ऑफ मुंबई पीपल। और सारा मुंबई दर्शन करने के बाद ही वॉन्टेड टू गो बैक टू जापान। तो एयरपोर्ट जाना था तो उन्होंने टैक्सी को बुलाए, टैक्सी में बैठे और टैक्सी ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी, प्लीज टेक मी टू द एयरपोर्ट। और टैक्सी ड्राइवर कौन थे, हमारे वेरी एंथुजियास्टिक इंटेलिजेंट सरदारजी ड्राइवर। अब वो गाड़ी चलाने लगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक होंडा कार बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके चली गई। जापानीज टूरिस्ट वॉज वेरी एक्साइटेड, उन्होंने अपना सर विंडो के बाहर निकाला और कहा, होंडा वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। तो हमारे सरदारजी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट ही वॉज कूल काम, डिड नॉट रिएक्ट। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक मिट्सुबिशी गाड़ी आई, बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। एज यूजुअल जापानीज टूरिस्ट वॉज वेरी एक्साइटेड, ही पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द विंडो एंड सेड, मिट्सुबिशी वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। हमारे ड्राइवर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट कूल काम रिलैक्स, डिड नॉट रिएक्ट। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक टोयोटा कार बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। एज यूजुअल द जापानीज टूरिस्ट वेरी एक्साइटेड, उनका स्टेटमेंट था, टोयोटा वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। और ये सिलसिला चलता रहा। और कुछ समय के बाद जब टैक्सी एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जापानीज टूरिस्ट उतरे और हमारे सरदारजी ड्राइवर भी उतरे। तो जापानीज टूरिस्ट ने पूछा, टेल मी व्हाट इज द फेयर, कितना भाड़ा हुआ। तो हमारे ड्राइवर साहब ने कहा, 10,000 रुपए। माई गॉड, 10,000, हाउ इज दिस पॉसिबल, जापानीज टूरिस्ट ने पूछा। और हमारे वेरी इंटेलिजेंट सरदारजी ड्राइवर ने क्या किया, अपना हाथ मीटर पर रखा और कहा, मीटर वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, जस्ट स्टार्ट ऑन अ वेरी लाइटर टोन, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, आज का जो जीवन है ना, इट्स वेरी वेरी फास्ट, हाई वेलोसिटी, सारा जो सिस्टम है वो फास्ट फूड मैकेनिज्म है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग फाइव डे मैच देखते थे, फिर धीरे धीरे वो वन डे मैच स्टार्ट हो गया, और आजकल कौन सा मैच खेलते हम लोग, वाह 2020। तो मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक दिन पूछा, भाई आज अगर हम 2020 खेलते हैं तो 10 या 15 वर्ष के बाद में क्या खेलेंगे। तो एक स्टूडेंट जवाब देता है, सर 10-15 वर्ष के बाद कौन विजेता है डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, टाइम नहीं है लोगों के पास, अब टॉस से डिसाइड करो इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, राइट। लेकिन ये जो फास्ट है, लाइफ तो बहुत फास्ट चल रही है, बॉम्बे में लाइफ कितनी फास्ट होती है, लेकिन जब हम इतनी फास्टनेस के ऊपर जा रहे हैं, कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, जितना फास्ट जाएंगे उतनी रिस्क भी है, लेकिन इस फास्ट में हमें जीतना भी है, विजय भी होना है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को मेंटेन करना यह बहुत बड़ा चैलेंज है। और कैसे इस चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं क्वालिटी इज रिमेंबर्ड फॉर एवर, हमें जापानीज लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी कॉन्शियसनेस। आप देखिए, 15 वर्ष या 20 वर्ष पहले अगर हमको कोई प्रोडक्ट खरीदनी थी तो हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं थे, फ्रिज का एक ब्रांड मिलता था, टीवी का एक ब्रांड। लेकिन आज सिस्टम यह है कि हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ चॉइसेस हैं, बहुत सारे चॉइस अवेलेबल हैं। इसलिए आज हमको एक कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को भी बताते हैं, है ना, बिकॉज द बैंडविड्थ ऑफ चॉइसेस इज देयर। और इतने सारे चॉइस में अगर हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वालिटी इज रिमेंबर्ड फॉर एवर। कहते फ्रेंड्स, टोटल क्वालिटी इंप्लाइज नथिंग इग्नोर्ड। ये जो सिस्टम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जापान में स्टार्ट हुई थी, जहां पे उन्होंने ये देखा कि अगर एक प्रोडक्ट वो कस्टमर को देते थे तो एट द एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में उसकी क्वालिटी को चेक करते थे, और अगर क्वालिटी में ऊपर नीचे होता था तो उसको प्लग करते थे, और जो प्रोडक्ट कस्टमर को देते थे, इट यूज टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। विल ए फोस्टर एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बताते हैं, जब वो कहते हैं, क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट, इंटेलिजेंट डायरेक्शन एंड स्किलफुल एग्जीक्यूशन। नाउ फ्रेंड्स, क्वालिटी बिगिंस विद द सेल्फ। सोचने की बात यह है कि आज हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कितना सोचते हैं, लेकिन अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनालिटी की क्वालिटी कैसी है उसको आज तक कभी हमने चेक किया है? और वो चेक करना बहुत जरूरी है। और क्या चेक करेंगे? दैट इज द क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी फ्रेंड्स दो शब्दों से बना हुआ है, पर्सन प्लस एबिलिटी इज पर्सनालिटी, राइट? जैसे रस्ते में बहुत लोग चलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्ति रस्सी पर चलता है ना, तो आप उसको देखने लगते हो, बिकॉज वो एक कला है, इट्स एन आर्ट। जब हम अकेले घर में होते हैं तो गीत गुनगुनाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लता मंगेशकर स्टेज पर आते हैं तो लोग वाह वाह करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक एबिलिटी है, वो कला है। हमने देखा है बॉम्बे में बिल्डिंग के नीचे बच्चों को क्रिकेट खेलने में बहुत आनंद आता है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर बल्ला लेकर क्रिकेट के मैदान पर जाता है तो हजारों की निगाहें उन पर टिक जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि सचिन के पास वो एक कला है। उसी तरह फ्रेंड्स जीवन तो सभी जी रहे हैं, चाहे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, न्यूयॉर्क, लंदन, लोग तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की क्वालिटी कैसी है और उसको चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे चेक करेंगे? टोटल क्वालिटी पर्सनालिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए चार बातों की जरूरत है। जिस तरह टेबल का चार स्तंभ होता है, आधार होता है, अगर एक भी स्तंभ ऊपर नीचे हो जाए तो इट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसी तरह हमारे अपने जीवन में चार बातों का हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है, आप इसको चेक करते रहना। नंबर वन इज क्वालिटी ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। नंबर टू इज क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट, हमारी मानसिक अवस्था। नंबर थ्री क्वालिटी ऑफ एक्शन, सामाजिक अवस्था। और नंबर फोर्थ इज क्वालिटी ऑफ विजन, आध्यात्मिक अवस्था। ये चारों बातों में हार्मनी होना, बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब मैं ये चार बातों का डिस्कशन आपके सामने कर रहा हूं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेट में गया, कुछ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छे लगे तो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं, उसमें फिर मजा भी नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड्स हमें बहुत खुशी होती है बताते हुए कि ये जो बातें आज हम आपके सामने रखेंगे इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है, और ये रिसर्च ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में काफी वर्षों से कर रहे हैं। कौन किस बात पर रिसर्च है? करीब कुछ वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होना है ना, तो तीन क्राइटेरिया जरूरत थे। नंबर वन, ही और शी शुड बी मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, 40 वर्ष के ऊपर होना जरूरी है। नंबर टू, ही और शी शुड बी ओबीज, थोड़ा मोटापा होना चाहिए। और नंबर थ्री जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी रिलेटिव्स में, मम्मी डैडी में अगर वो प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली बच्चों में आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं, टुडे एनी पर्सन अबाउ द एज ऑफ 15 ईयर्स कैन सफर अ सीवियर हार्ट अटैक। ये तीन क्राइटेरिया जरूरत हो या नहीं हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक मतलब जिसको एंजाइना कहते हैं, हमारी मेन आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमको बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी रिकमेंड करते हैं। हमारे शरीर में से और कोई से एक वेन ले लेते हैं, मेन चैनल ब्लॉक है तो एक बाईपास दे देते हैं। लेकिन रिसर्च ये देखा गया है कि अगर हमारी जीवन शैली परिवर्तन नहीं हुई तो कुछ समय के बाद ये जो बाईपास चैनल है वो भी ब्लॉक हो जाती है। सो व्हाट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन अ हेल्दी क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड्स। और रिसर्च ये देखा गया है कि अगर हम ये चारों बातों के बीच में बैलेंस रखेंगे तो हमारी जो मेन आर्टरी जो ब्लॉक है वो भी धीरे धीरे खुलने लगती है। आप सभी बॉम्बे के भाई बहनों का दिल बहुत विशाल है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं और कोई सा शहर में अगर ये बात कहूं ना तो इमीडिएटली लोग रिएक्ट करते हैं, प्रोफेसर व्हाट इज अ प्रूफ फॉर दिस, है ना, इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? इसलिए फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक बहुत सुंदर वंडरफुल पर्सनैलिटी को सामने लेकर आना चाहूंगा। जैसे ही वही पर्सनैलिटी को आप देखेंगे जो कहेंगे कि यस आध्यात्मिक, और मेन तौर पर ये जो आर्टरीज ब्लॉक ओपन होते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, जो पिछले आज सुबह से जो दो सत्र सुन रहे थे ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। इसलिए आप अपने प्रोफाइल में देखना आपके प्रोग्राम में जो भी राजयोग सत्र है वो राजयोग सत्र को किसी भी हालत में आप मिस नहीं करना, जरूर जरूर अटेंड करना, क्योंकि अगर आप में किसी भी भाई बहनों का आर्टरीज ब्लॉक है ये राजयोग सत्र सुनते सुनते धीरे धीरे वो ओपन होने लगेंगे। एब्सोल्युटली राइट, विश्वास नहीं होता ना? तो एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जैसे ही उस पर्सनालिटी को आप देखेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि यस मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के द्वारा इतना हेल्थ पर इफेक्ट करता है। आप गेस कर सकते हैं वो पर्सनालिटी कौन होंगे? ए बहुत वंडरफुल पर्सनैलिटी। अच्छा, वो पर्सनैलिटी को देखते ही साथ आप सभी यहां जो बैठे हैं ना, आपका चेहरा एकदम फूल की तरह खिल उठेगा। जस्ट गिव मी वन मिनट टाइम, तालियां बजाना उनके लिए है। हाँ, पहले से तालियां नहीं बजाओ है? अभी देखो कौन है। आई रियली अप्रिशिएट है जस्ट, लेकिन होल्ड ऑन फॉर वन मिनट। मुझे ये पर्सनालिटी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तालियां बजाइए। ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हिज एक्सलेंसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं डॉक्टर कलाम जी का बहुत बहुत दीवाना हूं बिकॉज ऑफ टू गुड रीजंस। नंबर वन, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ टेक्नोक्रेट, तो हमारी वेवलेंथ बहुत अच्छी मैच होती है। और दूसरी विशेषता डॉक्टर कलाम की यह है, ही हैज गॉट मोर देन 33 पीएचडी डिग्रीज टू हिज क्रेडिट। तो अगर हमें डॉक्टर कलाम को एड्रेस करना होगा तो डॉक्टर 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 33 टाइम्स बोलना पड़ेगा, है ना। और मैंने देखा है डॉक्टर कलाम वेरी सिंपल, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ ह्यूमन बींग। नाउ दिस इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एड्रेसिंग द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। आप जहां बैठे हैं ना, यहीं पर कुछ एक वर्ष पहले सारे देश विदेश के इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट बैठे थे द सेम प्लेस, और डॉक्टर कलाम ने उन सारे कार्डियोलॉजिस्ट को एड्रेस किया था। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, आप डॉक्टर कलाम को खुद सुनिए तो आपको विश्वास हो जाएगा।
डॉक्टर चोपड़ा,
हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road Shantivan.
Shantivan, jab aap niche jayenge to wahan pe hamara dusra campus hai, to wo bhi aap zarur zarur jaate waqt zarur zarur dekhna.
Grateful to you sir being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference which commenced this morning at 4 a.m. This conference is a unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program in the morning at 4 o'clock, sir, followed by yoga and a walk for a healthy heart. Excellency,
How much time walked?
People walked a symbolic walk around the Diamond Hall. It was for about 15 to 20 minutes, sir.
No, you must walk 50 minutes, then only effect will be there.
हाँ, डॉक्टर कलाम कहते हैं सुबह उठकर कितना समय योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए? 15 या 50? वाह, वेरी गुड लिस्निंग पा, आई रियली अप्रिशिएट दैट, गुड गुड गुड। एंड व्हाट अ स्माइल, यू नो, टेरिफिक पर्सनालिटी।
हिज एक्सीलेंसी, the meditation program was received very well. Almost 3/4 of this auditorium or the conference hall was full. People have desire to experience silence. It was very obvious this morning, sir. We should be presented tomorrow. Finished our scientific forum at Rini. She, Vice President of IMSA, needs no introduction. His Excellency,
who really worked very hard to make this conference a success.
We have Diana and Sister Sharda, who are the master of ceremonies, sir. This is just a brief introduction of the people on the dais, and we have a huge audience. Can you just show the audience to His Excellency? And I'm sure everybody is waving to you, sir. They are all the faculty from India and abroad, as well as Dilwalas. We'd like to hear from you, sir.
Friends, I am indeed very happy to meet you all. Thank you, Chopraji, for the beautiful introduction what you have given. You can hear me, all of you?
Yes.
Yes? Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas, please lift your hand.
फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछते हैं कि ऑडियंस में जो दिल वाले हैं वो हाथ उठाओ. सभी के दिल यहां पर हैं, जरा चेक करो, दिल हैं. अच्छा, डॉक्टर कलाम, दिल वाले उन पेशेंट्स को रेफर करते हैं जिनके हार्ट में प्रॉब्लम था और जिन्होंने ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास के द्वारा जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए. तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो हमारे विद्यालय के बहुत वंडरफुल रत्न हैं, बाबा के बहुत वंडरफुल सेवाधारी हैं, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था इन एसोसिएशन विद डीआरडीओ. डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ के डायरेक्टर थे, तब से डीआरडीओ इन एसोसिएशन विद ब्रह्मा कुमारी से प्रोग्राम लॉन्च किए थे. तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी दो बातों को रेफरेंस देते हैं, एक तो दिल वाले एंड साथ वाले. कहने का भाव यह है कि अगर हस्बैंड, पति को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको दिल वाले कहते हैं, पत्नी को वो साथ वाले कहते हैं. और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी कहते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम अटेंड करना है तो अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो वो तो आए, लेकिन साथ में उनकी पत्नी जिन्होंने हस्बैंड को दिल में प्रॉब्लम दी है उनका भी साथ आना बहुत बहुत जरूरी है, है ना. इट कैन हैपन वाइस वर्सा ऑल्सो. अच्छा, तो दोनों का दिल वाले एंड साथ वाला होना बहुत जरूरी था. मुझे याद है बॉम्बे में मैं कॉर्पोरेट ग्रुप को एड्रेस कर रहा था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहा था. तो जब मैंने दिल वाले और साथ वाले कहा तो एक एम्प्लॉय बैठा था, इमीडिएटली बोलता है, सर साथ वाले में वाइफ के साथ साथ मैं अपने बॉस को भी लेकर आऊं क्या, वो भी हमारे दिल में बहुत प्रॉब्लम करता है. मैंने कहा भले भले, जरूर लेकर आओ. तो दिल वाले एंड साथ वाले इज द रेफरेंस. मैं आपको थोड़ा सा ये रेफरेंस दूंगा ये प्रोजेक्ट के बारे में. दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड अराउंड 10 years back अप्रोक्सीमेटली. बहुत सारे पेशेंट्स को बुलाए गए एंड उनको दो ग्रुप में बांटा गया. फर्स्ट इज कॉल्ड द कंट्रोल ग्रुप एंड द हेल्दी ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप जो था उनको हमने एक्सरसाइज और डाइट के बारे में बताया, लेकिन हेल्दी ग्रुप को एक्सरसाइज डाइट के साथ मेडिटेशन भी सिखाया गया. एंड दीज पेशेंट्स वर ट्रैक्ड फॉर मोर देन 8 years. 8 वर्ष के बाद इनके एंजियोग्राफी रिपोर्ट को इवैल्यूएट किया गया एंड द रिजल्ट्स वर टू अमेजिंग. रिजल्ट्स ये देखा गया कि कंट्रोल ग्रुप के आर्टरीज ब्लॉक बढ़ गए, जबकि हेल्दी ग्रुप जो आर्टरीज ब्लॉक थे वो धीरे धीरे ओपन हो गए. आपको ये अगर प्रेजेंटेशन देखना है तो आप हमारे केसेट काउंटर से ये प्रेजेंटेशन जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वी विल नॉट स्पेंड दैट टाइम हियर. लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं एंजियोग्राफी का इवैल्यूएशन जरूर दिखाऊंगा.
फ्यू पीपल, ओके.
नाउ देखिए, जो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता कितनी जरूरत है, तो वहां पर देखो, द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज अ फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग शुड बी एडेड apart from the mind body social well being.
few people, but I tell you about the dimension. What is that fourth dimension? That is with physiological consequence.
यहां पे डॉक्टर कलाम कहते हैं effect of positive and negative thoughts. हर एक संकल्प, हर एक विचार जो हम कर रहे हैं, it gets converted into matter, it gets converted into neuropeptides and gets communicated to 50 to 60 trillion cells. इससे जब तक आप यहां पर हैं इतना पॉजिटिवली चार्ज कर लो, क्योंकि बॉम्बे में इतनी पोल्यूशन, इतनी पॉपुलेशन होती है, उसके लिए हम यहां पे चार्ज होकर जाएं.
थॉट्स इन द ब्रेन वॉज बाय अडेप्टिंग ए हेल्थी लाइफ स्टाइल. 118 पेशेंट्स डायट एंड एक्सरसाइज बट वॉज नॉट गिवन दैन वॉज अ स्टेबल डायट ऑफ एवरी इंडियन फैमिली अबाउट 5 decades अगो. द एक्सरसाइज गिवन वॉज सिंपल, ये ब्रिक्स एंड अनालाइज बाय अ पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट एंजियोग्राफर्स. The outcome appears to be quite rewarding. I saw yesterday.
अक्सर ब्रह्मा कुमारी कहते हैं ना, 7 दिन का कोर्स करो, within 7 days. अभी देखो आपको एंजियोग्राफिक इवेल्युएशन डॉक्टर कलाम कहते हैं, within 7 days of practicing राजयोग मेडिटेशन, marked reduction in drug score, symptom score, improvement in exercise tolerance, stress hormone profile, lipid profile and psychological profile. जो राजयोग सत्र आप अटेंड कर रहे हैं उसका इफेक्ट मेडिकल इवैल्यूएशन ये देखा गया है.
लाइक एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, ये विजिबल प्रोफाइल्स इंप्रूव्ड इन नोटिस. इन फैक्ट द इंक्रीज अल्फा वेव्स कुड बी रिकॉर्डेड रियली गिव्स अस एम्पल एविडेंस.
देखिए, ये एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन दिखाया गया है कि राजयोग मेडिटेशन से क्या फायदे हो रहे हैं.
हैव टू कंफर्म आवर हाइपोथेसिस about the efficacy of lifestyle intervention in promoting sustainable healthy hearts.
ये देखिए, पहला जो व्यक्ति आया था, देखो कैसे आर्टरीज ब्लॉक है और उन्होंने विदिन 1.5 years आपको डेट भी लिखा हुआ है. ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी नदियां जैसे सागर के तरफ जा रही है, इतना वंडरफुल इफेक्ट था. अभी डॉक्टर कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी. ओके नाउ फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप सभी यहां पे कन्विंस्ड हो गए हैं कि यस वी आर स्पीकिंग सेंस हियर. ओके, तो ये चार बातों को जो हमारे प्रोजेक्ट में भी लिया जाता है। ये चार बातों को आज हम कवर करेंगे, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट, क्वालिटी ऑफ एक्शन एंड क्वालिटी ऑफ विजन। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ हेल्थ, और जब हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के बारे में कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल मशीन। सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। आप कहेंगे स्वामी भाई वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज, कहां समय मिलता? विशेष तौर पर बॉम्बे के भाई बहनों को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा सारा रूटीन सेट होता है 7:12 लोकल ट्रेन, 7:18 लोकल ट्रेन, है ना, तो हमको कहां समय मिलता है। एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न यह था, व्हाट इज द थिंग दैट सरप्राइजेस यू द मोस्ट अबाउट ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों को देखकर आपको सबसे आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और भगवान का बहुत क्लासिक जवाब था, ईश्वर का जवाब था, द थिंग दैट सरप्राइजेस मी द मोस्ट अबाउट दीज ह्यूमन बींग्स इज दीज ह्यूमन बींग्स दे इन्वेस्ट देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ, दे इन्वेस्ट देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ, आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर कंप्लीट वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। भाई जान है तो जहान है, इससे सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप में से कितने भाई बहने आज का सुबह के सत्र एक्सरसाइज का सेशन अटेंड किया, हाथ उठाओ। वाओ सभी, कल भी जरूर जरूर अटेंड करना, क्योंकि ये है हमारी इस गाड़ी की मेंटेनेंस। जब हम बहुत वर्ष पहले इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना, तो हमारा एक अलग सा सब्जेक्ट था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसमें एक टॉपिक था मेंटेनेंस, और हमको ये बताया जाता था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मेंटेनेंस ऑफ ऑल व्हीकल्स एंड मशीन्स। उसी तरह ईश्वर ने भी हमको एक बहुत सुंदर गाड़ी दी है, इसको भी सुबह उठकर थोड़ा सा मेंटेनेंस करना बहुत बहुत जरूरी है, करेक्ट। अच्छा, यहां पे जो आप अपने एक्सरसाइज देखा होगा, ये तो एक्सरसाइज बाहर वाले लोग भी सिखाते हैं, लेकिन एक यूनिक बात अगर आपने नोटिस की होगी कि यहां जो एक्सरसाइजेस बताते हैं, दे आर कॉल्ड अ साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड, फिजिकल मीन्स शरीर, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा न्यू बॉम्बे में जहां पे मैं रहता हूं, लोग सुबह उठकर बहुत वॉकिंग और एक्सरसाइज जॉगिंग करते हैं, लेकिन किस मानसिक अवस्था से आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो? आप चल तो रहे हो लेकिन बहुत गुस्से से चल रहे हो, तो इतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। जैसे यहां की जो बहन जी आपको कराते हैं, आप देखेंगे उनके वो बहुत सारा ऐसे स्टेटमेंट्स बताते हैं जिससे मन भी बहुत रिलैक्स्ड हो। मैं एक दो एक्सरसाइज अभी थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए कराता हूं। सभी स्ट्रेट बैठ जाएं, एंड कैन आई गेट अ स्टैंड, कैन आई गेट अ स्टैंड, ओके। हाँ सभी स्ट्रेट बैठे, सभी स्ट्रेट बैठे, और आज हम समय निकालकर, वैसे बॉम्बे में तो टाइम नहीं मिलता है, तो यहां पे टाइम निकालकर थोड़ा सा मेंटेनेंस करते हैं, या ठीक है, बहुत खुशी से करना, बहुत आनंद के साथ करना कि आज हम अपने इस बहुत वंडरफुल है ना गाड़ी की मेंटेनेंस कर रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। Now these exercises were devised by Dr. Girish Patel, a very famous psychiatrist from Borivali, Bombay. मुझे exercise बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? क्या करना है? अच्छा, जब मैं कहूंगा one, तो आप ऐसे जोरदार ऐसे ताली बजाना। अभी इसे नहीं करना, बहुत excited हो रहे हैं, अभी इतना वर्ष exercise नहीं किया, तो चलो आज ही चालू करते हैं। थोड़ा relax हो जाइए। जब मैं कहूंगा one, तो आप ऐसे जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन को टच कर रहे हो। सुप्रीम सर्जन कौन है? शिव परमात्मा, है ना? आज आपने उनका परिचय लिया। और जब मैं कहूंगा टू, तो आप महसूस करना कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस धीरे धीरे उतर उतर कर आपको टच कर रहे हैं, है ना? बहुत खुशी से, बहुत मुस्कुराते हुए हम सभी करेंगे। करेंगे सभी? यस और नो? चलो हियर वी स्टार्ट। वन, जोरदार ताली बजाइए। टू, हाँ, वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ग्रेट, हाँ, यस। एक और बार करेंगे, है, बहुत खुशी से करेंगे। वन, टू, महसूस करिए कि वो परमात्मा से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर हमारे इस वंडरफुल शरीर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे हम उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हैं ना, वी बिकम डिजीज फ्री। एक्चुअली हमारे शरीर में डिजीजेस क्यों होते हैं? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इनसाइड द बॉडी। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डॉक्टर्स का होता है टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। और फ्रेंड्स, आजकल शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स तो हमारे मन में है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, गुस्सा, ये सारा हमारे मन में है। तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं कहूंगा वन, तो अगर शरीर में मन में अगर टॉक्सिन्स है तो, नहीं है तो डोंट वरी, है, है ना, नहीं है तो नथिंग टू वरी। लेकिन अगर है तो जब मैं कहूंगा वन तो आप उसको इस तरीके से झटक दो, लाइक दिस, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक दो, है। अब ये महसूस नहीं करना कहीं दूसरों के टॉक्सिन्स मेरे पास नहीं आ जाए, डोंट वरी अबाउट दैट, है। ये ज्ञान सरोवर में बहुत वर्षों से हमारे योगी भाई बहन इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, द कॉस्मोस इज टू गुड हियर, तो ऐसा बिल्कुल डरना नहीं है ना, बहुत खुशी से करना मुस्कुराते हुए। कोई भी टॉक्सिन्स अगर है, कोई भी फिक्र है, चिंता है, गिव इट टू द ऑलमाइटी गॉड, खुशी से करेंगे। हियर वी स्टार्ट, वन सभी करो, टू थोड़ा धक्का मार दो, एक और बार, वन टू। बापरे माताएं तो इतना जोर से धक्का मार रहे कि सीधा इंडिया के बाहर चला जाए, हैं? क्योंकि माताएं जो होते हैं द मोर हेल्थ कॉन्शियस हैं। परिवार में अगर है ना हाउसवाइफ का हेल्थ ब्रेकडाउन हो गया तो सारा परिवार ब्रेकडाउन हो जाएगा। भाई हमारी माताओं के लिए जोरदार तालियां तो बजाइए। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो दो तीन दिन जब आप यहां पर हैं तो सुबह का सत्र का जरूर फायदा उठाइए, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल मशीन। अच्छा, दूसरी बात क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए एक अच्छी बात बताना चाहूंगा जो मैंने इस विद्यालय से सीखा और मेरे लाइफ के मेरी पर्सनालिटी में परिवर्तन करने का बहुत वंडरफुल निमित्त बना, वो सजेशन। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो रस्ते में जो गाड़ियां चलते हैं ना उसमें हम पेट्रोल भरते हैं, एरोप्लेन में भी पेट्रोल भरते हैं, किसकी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल अच्छी होगी, रस्ते में चलने वाली गाड़ी की कि एरोप्लेन की? माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, राइट आंसर है, क्योंकि हमको पता है कि जो रस्ते में जो चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल के साथ थोड़ी मिलावट अगर कर दें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन एरोप्लेन में अगर पेट्रोल के साथ मिलावट कर दिए और अगर एरोप्लेन उड़ते उड़ते कहीं रुक गया तो क्या होगा? नहीं, हम नीचे थोड़ी ना आएंगे, हम तो सीधे ऊपर जाएंगे यार, नीचे आने की मार्जिन ही नहीं बचेगी ना। हाँ, एरोप्लेन भले नीचे आ जाए, राइट, लेकिन हमारा तो टिकट ऊपर का हो जाएगा ना। कहने का भाव है कि किस प्रकार के फ्यूल हम डालते हैं, उसी तरह ये जो शरीर है ये भी बहुत सुंदर गाड़ी जो ईश्वर ने दी है, इसमें किस प्रकार का भोजन हम करते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आपको सजेशन देने वाला हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइफ में यूज करना, नहीं तो जाते जाते आप कोई सा भी डस्टबिन में ये सजेशन डालकर चले जाना। लेकिन सजेशन ये है, लेट्स इंट्रोस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इनटेक। और फ्रेंड्स, रिसर्च में ये देखा गया है, दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिसएडवांटेजेस है, उस पर हम ज्यादा नहीं विचार करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि रिसर्च इज रिसर्च, साइंस इज साइंस। 10 वर्ष से ये जो विद्यालय ने रिसर्च किया गया, देखा गया है दिस शरीर इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड। तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ सलाड्स, लॉट ऑफ जूस, लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स आप लीजिए, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर दी हेल्थ। नॉन वेजिटेरियन फूड एक तो पकने में बहुत टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी अगर आप विश्वास नहीं करते तो एक खुशखबरी मैं देता हूं, इस संसार में वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो डा विंसी, पाइथागोरस, सोक्रेटस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुइस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड प्रोफेसर स्वामीनाथन, वी आर ऑल प्योर वेजिटेरियंस। यस, वेलकम टू दिस वंडरफुल क्वालिटी क्लब, आपका इस क्वालिटी क्लब में हार्दिक स्वागत है, निमंत्रण है। फ्रेंड्स, मैं आपको जितना भी रिसर्च बताऊंगा, विश्वास करना या नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन कहते हैं एक्सपीरियंस इज अवर बेस्ट टीचर, अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु है। जब वापस आप बॉम्बे में जाएंगे ना, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए प्योर वेजिटेरियन डाइट लीजिए, आप महसूस करेंगे आपका शरीर भी लाइट हो जाएगा और मन भी ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जहां तक डाइट का सवाल है, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब स्कूल जाते हैं ना तो मम्मी जो होती है बहुत स्नेह और प्रेम से टिफिन बॉक्स बनाकर देते हैं, तो बच्चे कहते नहीं मम्मी हम वो कैंटीन से कर लेंगे, नहीं बेटा मैंने कितना प्रेम से बनाया, नहीं 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 हम वो कैंटीन में कर लेंगे। और यही बच्चे जब स्कूल के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोई दूसरे शहर में इंजीनियरिंग या मेडिसिन के लिए जब एडमिशन मिलती है ना, 2-3 महीने के बाद मम्मी को फोन करते हैं, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मम्मी कहे बेटा क्या हुआ, नहीं मम्मा आई एम मिसिंग यू। मम्मी पूछे बेटा व्हाट इज द प्रॉब्लम, हेल्थ तो ठीक है ना? हाँ मम्मा हेल्थ तो ठीक है, भोजन कैसे चल रहा है? नहीं मम्मा भोजन में ही प्रॉब्लम है। बेटा मैं तो तेरी कैंटीन में आई थी, कैंटीन तो बहुत अच्छा है. नो मम्मा, आई एम रियली मिसिंग योर फूड. क्योंकि मम्मा जिस वाइब्रेशन से भोजन बनाते हैं ये बहुत बहुत जरूरी है. तो आप सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप भोजन बना रहे हैं बहुत खुशी से, बहुत आनंद, बहुत प्रेम से भोजन बनाइए. अगर आप ऐसे भोजन बनाए, यही कोई जीवन है क्या? जिंदगी भर में किचन में यही मेरा प्रोफेशन है क्या? अगर इस वाइब्रेशन के साथ भोजन बनाए तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन करेगा उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. भाई लोग कहेंगे स्वामी भाई अच्छी बात बताई है, वेरी गुड, है ना. लेकिन भाइयों से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि सिर्फ बहनें भोजन बना सकते हैं, भाई लोग भोजन नहीं बना सकते? कोई शास्त्र में लिखा क्या? हाँ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ. तो मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार किचन में जाकर जब बहन भोजन बना रहे ना तो किचन, भाई लोग क्या करते हैं, ऑफिस से आते हैं इमीडिएटली वो टेलीविजन ऑन कर देते हैं, न्यूज़पेपर चालू हो जाते हैं और बहनों का एकदम सर गर्म हो जाता है ना. तो बस टेलीविजन ऑन नहीं करो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, बस जाकर एक्नॉलेज करो किचन में जाकर. अच्छा भोजन बना रहे हो, क्या बना रहे हो? और अगर आपका और थोड़ा इमोशंस होगा तो टमाटो कट करके दो. एक तो बहन जी बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, क्या हो रहा है आज रहा. बट इट गिव्स अ वेरी वेरी वंडरफुल इमोशनल फीलिंग. बहुत बहुत जरूरी है. करीब 12 वर्ष पहले जब मैं इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया तो मैंने एक बहुत यूनिक अवस्था यहां पर देखी, यूनिक सिस्टम मैंने देखी. जब मैंने देखा बहनें जो हैं स्टेज पर भाषण दे रहे हैं और हमारे सारे जो भाई लोग हैं किचन में भोजन बना रहे हैं, है ना. और मुझे हमारी जो टीचर बहन जो आई थी वो उन्होंने मुझसे कहा स्वामी भाई ये जो सारे जो भाई लोग किचन में भोजन बनाने इनका इस विद्यालय में बहुत मतलब ऊंचा दर्जा है. जो परफेक्ट जो राजयोगी आत्माएं होते हैं उनको ही किचन में प्रवेश दिया जाता है. हमारे जो इस विद्यालय में जो बड़े बड़े जो भाई हैं जैसे सूरज भाई, आत्म भाई, रामनाथ भाई, रामलोचन, ये जो सारे भाई जो हैं किचन में भोजन बनाते हैं. और मुझे इतनी प्रेरणा मिली, मैंने कहा है योगी बनने के पहले किचन में एंट्री करनी पड़ेगी. और मैंने उस दिन से ये भोजन बनाना सीखना आरंभ किया. और आज भी मुझे इतनी खुशी होती है थैंक्स टू द ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कि अगर मेरे फैमिली में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, किसी को भोजन बनाने का टाइम नहीं मिलता, मैं कहता हूं नथिंग टू वरी, मैं बहुत खुशी से आज भोजन बनाऊंगा. और अगर आप कभी न्यू बॉम्बे तरफ आ रहे हो तो स्वामी भाई से मिलना, मैं बहुत स्नेह और प्रेम से दोसा चटनी जरूर खिलाऊंगा. तालियां बजाइए. बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आने के पहले प्लीज मुझे इंटीमेट जरूर कर देना, क्योंकि दोसा बनाने के लिए ना एक दिन पहले से उसको रखना पड़ता है, इसलिए वो इंटीमेट जरूर करना तो मैं आपको जरूर जरूर बनाकर खिलाऊंगा. कहने हाँ हाँ, फोन नंबर भी दे दूंगा. अच्छा फोन नंबर चाहिए, एंड में जरूर दे दूंगा. कहने का भाव है भोजन जब बना रहे हैं बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ आप भोजन बनाएं, उस वाइब्रेशन के साथ भोजन बनाना. इसे यहां पर जो आप भोजन खाते हैं ना इसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं. वो ईश्वर की याद में बहुत खुशी और आनंद के साथ भोजन बनाया जाता है. दैट इज क्वालिटी ऑफ हेल्थ. नंबर टू इज क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट. है ना, हमने देखा है कि अगर हम स्ट्रेस ग्राफ को प्लॉट करें, तनाव के ग्राफ को प्लॉट करें, तो इंडियन पेरेंट्स में ये देखा गया है कि जनवरी फरवरी में ये ना स्ट्रेस ग्राफ बढ़ने लगता है और मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे से कम होने लगता है. मार्च अप्रैल में इतना तनाव क्यों बढ़ता है? माय गॉड, राइट आंसर है, एकदम इंटेलिजेंट ऑडियंस है. इंडिया में कहीं पर भी जाओ ये क्वेश्चन पूछो तो स्टैंडर्ड राइट जवाब, बच्चों के एग्जाम्स, बच्चों को कोई तनाव नहीं होता, मम्मी डैडी के रात की नींद उड़ जाती है ना. किसी ने आज तक यह जवाब नहीं दिया कि सर उस समय हमको प्रोडक्शन शेड्यूल मीट करना होता है, उस समय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो आज तक किसी ने यह जवाब नहीं दिया. स्टैंडर्ड जवाब, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, राइट. और हमने देखा जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना उस दिन मम्मी डैडी का प्यार बच्चों से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है. अगर बेटा का एग्जाम 10 बजे होगा तो मम्मी सुबह उठकर प्रार्थना करकर बहुत प्रेम से ब्रेकफास्ट बनाएंगे और बच्चे को ब्रेकफास्ट भी खिलाएंगे, हॉर्लिक्स भी पिलाएंगे, बॉर्नविटा भी पिलाएंगे. बेटा कहेगा मामा आज मुझे भूख नहीं. नहीं बेटा तेरा एग्जाम है ना, यू हैव टू टेक इट अप. मामा मुझे भूख नहीं है. फ्रेंड्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द प्रॉब्लम विद द बॉय इज नॉट विद द स्टमक, द प्रॉब्लम विद द बॉय इज इन द माइंड. मन का प्रॉब्लम है. हम शरीर में कितना भी उसको भोजन दें उसको वो रिलैक्स फील होगा ही नहीं. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जिस तरह शरीर को एक्सरसाइज, शरीर को हम भोजन देते हैं, उसी तरह मन का एक्सरसाइज है मेडिटेशन और मन का भोजन है विचार. सारे दिन में हमें चेक करना है कि सारे दिन में हम अपने मन को किस प्रकार का विचार देते हैं. जैसे बासी भोजन होती है ना हम बच्चों को नहीं देते हैं.
क्योंकि हमें मालूम है उनका हेल्थ को इफेक्ट होगा। उसी तरह हमें ये चेक करना है सारे दिन में हम मन को किस प्रकार का विचार दे रहे हैं, और अगर वो बासी विचार होगा तो मन को जरूर इफेक्ट करेगा। इसे फ्रेंड्स डॉक्टर कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, स्टार्ट्स विद द माइंड। मैं बहुत इंजीनियरिंग बच्चों को, मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं बच्चे बाहर से पर्सनैलिटी एकदम अच्छी लगती है, मोबाइल में हमेशा बात करते रहेंगे, बहुत हाईफाई इंग्लिश बात करेंगे, फिर मुझे ये आश्चर्यजनक समाचार मिलता है कि दैट स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। क्यों? एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पर बहुत फोकस कर रहे हैं, हर दिन वो लड़का जिम में जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज द इनर पर्सनैलिटी, और उसमें मन के विचार बहुत बहुत जरूरी है। तो चेक करना है कि सारा दिन में हम अपने मन को किस प्रकार का विचार देते हैं। जैसे बेटी मम्मी से कहती है मम्मी आई गॉट माई ट्यूशन क्लासेस, मैं शाम 6 बजे वापस आ जाऊंगी। कितने बजे वापस आएंगे? कितने बजे वापस आएंगे? 6 बजे। मम्मी कहती परफेक्टली ओके। 5-5:30 बजे तक मम्मी इज इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत प्रेम से जाकर किचन में ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बीच बीच में जाकर खिड़की में देखते हैं कि भाई बेटी की काइनेटिक की आवाज आ रही कि नहीं। 5:45, 5:50 और जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं मामा के मन में विचार स्टार्ट होते हैं। 6:05, 6:10, 6:15 मम्मी के मन में विचारों का तूफान हो जाता है। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ज्यादातर विचार पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? माय गॉड, अ परफेक्टली राइट आंसर, सभी अनुभवी बैठे हैं, ग्रेट। अब कौन कौन से विचार चलते वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम सभी अनुभवी हैं। 6:20, 6:25, 6:30 मामा इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ, शी पिक्स अप द फोन, पुअर पापा इज बिजी इन अ मीटिंग, मुझे कुछ नहीं सुनना, वहां फोन करो, यहां फोन करो, यहां फोन करो, बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। तो पापा जो है ना मम्मी को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, नथिंग टू वरी, लेट हो गए होंगे, आ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप ही ने आपकी बेटी को सर पर चढ़ाकर रखा है। और पुअर पापा वंडर खाते, मैंने कब सर पर चढ़ाया है। अब बेटी के साथ क्या हो रहा है, अब ट्यूशन मास्टर इस लहर से पढ़ा रहे हैं, यू कैनॉट एक्सपेक्ट द गर्ल टू स्टैंड अप एंड से सर मुझे अभी जाना है बिकॉज आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माई डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM, बोल सकते क्या? नहीं। 6:30 बजे बेटी छूटते हैं तो बहुत स्नेह और प्रेम से वो काइनेटिक चलाकर आते हैं, बाय द टाइम शी रीचेस द रेसिडेंस इट इज 6:45 एंड मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं टाटा 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 AK-47 राइफल, फायरिंग पर फायरिंग, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बेटी भी रिएक्ट करती है। आपको इतना बेसिक कॉमन सेंस नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड व्हेन द पुअर पापा रिटर्न्स बैक एट 7:30 द होल हाउस इज इन कर्फ्यू, लॉ एंड ऑर्डर इज इन अ टेरिफिक स्टेट ऑफ सिचुएशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब पहला नेगेटिव संकल्प मामा के मन में आया, मामा ने वो गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाया, गाड़ी को एक्सीलरेट करते गए, और जो गाड़ी को जहां ब्रेक लगाना चाहिए अगर हम उस गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे तो जरूर जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो राजयोग एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये विचारों के तूफान को हम ब्रेक लगा सकते हैं। इसलिए जब आप ये राजयोग की विधि सीखेंगे तो आप ये जरूर जरूर महसूस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मन के विचार। कहते फ्रेंड्स अ माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। हमारा मन एक पैराशूट की तरह है, वो तभी काम करता है जब वो खुलता है। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हाउ डू आई ओपन दिस पैराशूट, ये मन रूपी पैराशूट को मैं कैसे ओपन करूं। इसलिए कहते हैं इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ हार्ड वी वर्क, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ शार्प वी वर्क। और विशेष तौर पर आप ईश्वर के घर में आए हो, जब आप वापस बॉम्बे पहुंचेंगे तो आपके बच्चे पूछेंगे पापा कहां गए थे, आप कहेंगे मैं ज्ञान सरोवर गया था। पापा हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं? तो आप माउंट आबू जब विजिट करेंगे तो वो सामान तो खरीद के लेकर जाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर एक सुंदर सा गिफ्ट मैं आप सभी को देना चाहता हूं जब आप वापस जाएंगे, तो ये आप अपने बच्चों को साथ जरूर शेयर करना, और वो है हमारे बच्चों के एग्जाम्स रूपी जो टेंशन है उसको कैसे कम करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मम्मी डैडी आकर मुझके साथ शेयर करते वो कहते हैं स्वामी भाई बस हमारे बच्चे पढ़ लिख ले, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करें तो हमारा आधा तनाव खत्म हो जाएगा। इज इट राइट फ्रेंड्स? तो एक सुंदर सा गिफ्ट मैं आपको कल के सुबह के सत्र में दूंगा। आई अंडरस्टैंड द मॉर्निंग सेशन इज 9:00, उस सत्र में मैं आपको बताऊंगा मेमोरी मैनेजमेंट। और जब ये प्रोग्राम शेड्यूल हो रहा था तो हमारे आदरणीय दिव्या दीदी जी ने कहा नहीं, वो गिफ्ट तो बॉम्बे के भाई बहनों को जरूर देना है ताकि वो बच्चों को जरूर शेयर करें। तो हमारी है ना, देखो उनको कितना सिर्फ आपका ख्याल नहीं है लेकिन आपके बच्चों का भी कितना ना ख्याल है। इसे विशेष उन्होंने कहा ये मेमोरी मैनेजमेंट मैं आपको कल सुबह सत्र में लूंगा जहां पे मैं ये बताऊंगा कि ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करो बट हाउ डू वी वर्क शार्प। और आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर यहां बहुत छोटे बच्चे बैठे हैं, सबसे छोटा बच्चा यहां कौन बैठा है, हाथ उठाएं, सबसे छोटा, हाँ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, हाँ क्या नाम है आपका, हैं पार्थ, हाँ देखो ये पार्थ कौन से क्लास में पढ़ता है, अच्छा जूनियर के जी, क्लास 1, 2, 3 में कोई पढ़ता है क्या, 3, 4, 5 में, हाँ कौन से क्लास में पढ़ते हो आप, थर्ड, हाँ दिस इज द, क्या नाम है आपका, करण, अरे वाह करण अर्जुन, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अच्छा करण देखो ये कल यहां पर होगा ना, आपको विश्वास हो या नहीं हो लेकिन ये करण इतना इंटेलिजेंट है और ये पॉसिबल पार्थ भी कर सकता है, लेकिन करण जो है इंजीनियरिंग फॉर्मूला कल आपको विद इन सेकेंड आपको बताएगा। और आप जब वो करण यहां, कल करण यहीं बैठना है ना, और आप रिपीट करना और आप करण के लिए कल जोरदार तालियां बजाएंगे, आज से ही थोड़ा संस्कार आरंभ करते, बैठो करण, करण सिट डाउन, हाँ नहीं वी हैव रीशेड्यूल्ड इट फॉर टुमारो मॉर्निंग, या आज मैं आपको शाम को 9 बजे खुशी की खुराक के बारे में कहूंगा, आपको आज बहुत खुश कर दूंगा, ठीक है। अच्छा नंबर 3 इज व्हाट इज कॉल्ड एज द क्वालिटी ऑफ एक्शन, हमने क्वालिटी ऑफ हेल्थ देखा, क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट, नंबर 3 इज द क्वालिटी ऑफ एक्शन, राइट। कहते हैं फ्रेंड्स इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, कौन से होते दो प्रकार के लोग, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे होते बुरे होते और एक्टिव एंड रिएक्टिव होते हैं, अच्छा और पॉजिटिव होते नेगेटिव होते, सकारात्मक होते नकारात्मक होते और हाँ जी जो खुशी देते जो गम देते, अच्छा और बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, ओके और एक्टिव होते पैसिव होते, वाह बहुत अच्छा आपके पास बैंडविड्थ ऑफ चॉइस है, वेरी गुड डूअर्स, हाँ ये इस पर बहुत अच्छी बात याद आई कि मैं कंपनी में गया था तो मैंने ये प्रश्न पूछा तो वहां का जो मैनेजर बैठा था उसने कहा स्वामी भाई अब संसार में कितने प्रकार के लोग होते वो तो नहीं पता है लेकिन हमारे ऑफिस में दो प्रकार के लोग हैं, आई वॉज वेरी क्यूरियस, बताइए बताइए। उन्होंने कहा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हार्ड वर्किंग, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हार्ड वर्किंग एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल हार्डली वर्किंग, सर हार्ड वर्किंग एंड हार्डली वर्किंग। वैसे कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं, पता है? कुछ लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो वहां से आ रहे हैं हम यहां से कट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक व्यक्ति का हर एक व्यक्ति के साथ एक सोशल अकाउंट होता है, एन इमोशनल अकाउंट इज देयर, और जिस व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा इमोशनल अकाउंट होगा ना उस व्यक्ति के साथ मिलते ही साथ हमारा चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल उठेगा, और कुछ लोग होते हैं जिसके साथ हमारा इमोशनल अकाउंट अच्छा नहीं होता है उनसे हम कभी मिलना ही पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि सबके साथ हम कैसे अकाउंट क्रिएट करें। मैं पिछले करीब 45 मिनट्स के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं, आप चाहे या नहीं चाहो एवरी वन ऑफ यू आर क्रिएटिंग एन अकाउंट विथ मी, स्वामी भाई के साथ आप एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोग बोल रहे होंगे क्या व्हाट इज स्पीकिंग वेली विन स्टॉप, बॉस देख रहे होंगे कब ये बंद होगा ये कब बजेगा, और कुछ लोग ऐसे करें कुछ भी हो दिल का अच्छा लगता है, यू आर क्रिएटिंग एन अकाउंट विथ मी, अच्छा यू आर एंजॉइंग सो नाइस, है ना। द सेम वे एज अ स्पीकर आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग एन अकाउंट विथ यू, मैं भी बहुत जगह जाता हूं बहुत लेक्चर्स जाता हूं, आई ऑल्सो क्रिएट एन अकाउंट विद द ऑडियंस, और बहुत खुशी की बात है आई हैव क्रिएटेड सच अ वेरी वंडरफुल पॉजिटिव अकाउंट विद दिस बॉम्बे ऑडियंस, तालियां बजाइए अपने लिए है? तो हमारे दिव्या दीदी जी कभी भी बोलेंगे मैं कहूंगा कौन सा ऑडियंस है, बॉम्बे का ऑडियंस, मैं भागता दौड़ता हूंगा, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल फेसेस, आप मुस्कुरा रहे हो आप सर हिला रहे हो, इट गिव्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट टू द स्पीकर, हाँ जी हाँ आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, राइट। अभी जीवन में सबके साथ एक बहुत सुंदर इमोशनल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कुछ 4-5 बातें मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट वन इज अवर एक्शन शुड बी गाइडेड बाय अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए। आप कहेंगे स्वामी भाई आजकल के संसार में निस्वार्थ स्नेह कहां होता है, होता है दो स्नेह निस्वार्थ है, एक है वो ईश्वर का स्नेह और दूसरा मां का स्नेह, और छोटू देखो मां के गोद में कितना खुशी का अनुभव कर रहा है बिकॉज ही इज एबल टू एक्सपीरियंस द प्योर अनकंडीशनल लव। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है जो समय प्रति समय मैं शेयर करता रहता हूं। एक बार मां जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, वो छोटू मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मामा वो बिल देखती है और छोटू मालूम क्या लिखता है, मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब मामा, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि आप मेरे डियर लविंग मम्मी हो, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। मामा ये बिल को देखते अपने उस छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय, इनोसेंट बॉय। मामा भी मुस्कुराती है। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, मामा लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे, रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भोजन डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते, 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता और कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता तो कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। समर इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, कीप योर मामा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू। हम सारी दुनिया को इंप्रेस करने के लिए कितना अपने ऊपर काम करते हैं, लेकिन देखा यह गया है, कीप योर मामा हैप्पी, चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। और यह स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, स्वयं ईश्वर कहते हैं, और आज ईश्वर ने यह महावाक्य कहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। सो कीप योर मदर हैप्पी, ध्यान से सुनना, कीप योर मदर हैप्पी एंड प्लीज कीप योर मदर इन लॉ ऑल्सो हैप्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो जब आप वापस जा रहे हो ना, हमारे में एक पर्सनालिटी में शिफ्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। अवर एक्शन शुड बी गाइडेड बाय अनकंडीशनल लव। दूसरा है, लेट्स लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिसिएशन। अगर हमें सब बहुत अच्छा पर्सनालिटी बनाना है, अ फेस इन द क्राउड बनना है, सबको अप्रिशिएट करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन लाइक्स अप्रिसिएशन। और जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत घर से करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि घर में हमारी दूसरी पर्सनैलिटी और बाहर दूसरी पर्सनैलिटी, इट कैन नेवर हैपन। और अगर हम वो कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग इनटू अ स्टेट ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी, मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन घर से शुरुआत करो, घर से अप्रिसिएशन स्टार्ट करो। एक बार 7 बजे हस्बैंड ऑफिस से घर वापस आए तो क्या देखा, वाइफ आराम से सोफा सेट में बैठे हैं, टेलीविजन ऑन है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो पतिदेव बहुत सरप्राइज हुए, तो हस्बैंड ने घर को देखा तो ड्राइंग रूम में बिल्कुल स्वच्छता नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं। वाइफ से पूछा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम टुडे? वाइफ ने कहा, कुछ नहीं। टेल मी यार, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कुछ नहीं। हस्बैंड बेडरूम में गए तो सुबह की वैसी अवस्था। फिर वाइफ से पूछा, टेल मी यार, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कुछ नहीं। हस्बैंड किचन में गए तो सारे रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े। फिर वाइफ से आकर पूछा, टेल मी यार, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो वाइफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वाइफ ने कहा, हर दिन जब आप शाम को 7 बजे ऑफिस से घर वापस आते हो, आप मुझसे स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हो, और आपका डायलॉग होता है, सारा दिन घर में बैठकर आप करते क्या हो? आज मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग टुडे। अप्रिशिएट करो। हमको लगता हम ही सुपर हीरो है, बाकी सब साइड एक्टर्स हैं। नो, अप्रिशिएट अदर्स, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिसिएशन। नंबर 3, अगर सर हमारी पर्सनालिटी का बैरोमीटर है, हाउ डू वी मैनेज अवर एंगर, गुस्से को व्यक्ति कितना मैनेज कर सकता है। फ्रेंड, जब भी एंगर आए ना, तो उसके सामने डी लगा दो, तो क्या होता है? डेंजर। हमने एक बार अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट्स एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है सर। मैंने कहा, डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर। और फ्रेंड्स, हमारा रिसर्च कहता है, मोर देन 80% पेशेंट्स जिनको हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, वे लोग वो होते हैं जिनको मिनट मिनट पर गुस्सा आता है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। एंड थैंक्स टू द ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, 5-6 वर्ष हो गए इसके, पहले मुझे याद ही नहीं है कि कब मुझे गुस्सा आया. ऑलवेज कूल, ऑलवेज काम, ऑलवेज रिलैक्स्ड, थैंक्स टू द वंडरफुल टेक्निक ऑफ राजयोगा मेडिटेशन. इतना कंट्रोल हो जाता है. हाँ, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए. हैं, मुझे याद है मैं एक बार 8th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेक्चर ले रहा था. द लेक्चर वॉज फ्रॉम 9 to 11 o'clock. और लेक्चर हम लोग वी वर ऑल इनग्रॉस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. और अचानक एक स्टूडेंट का मोबाइल रिंग हुआ. ही बिकेम वेरी हाइपर टक. सॉरी सर. मैंने कहा गेटअप गेटअप सर, आई एम वेरी सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं. मैंने कहा देखो, यू शुड हैव बेसिक कर्टसी. मेरे पास भी मोबाइल है, लेकिन क्लास में एंट्री करने के पहले मैंने उसको स्विच ऑफ मोड में या वाइब्रेटरी मोड में करके आया हूं. इतनी तो बेसिक कर्टसी होनी चाहिए. सर आई एम रियली सॉरी. मैंने कहा देखो, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, किनके पास मोबाइल है. सभी ने हाथ उठाया. मैंने कहा उनसे कुछ सीखो ना, कितने अच्छे बच्चे हैं, सभी के पास मोबाइल है. और जब मैं पढ़ा रहा हूं, ये अच्छे बच्चे सारी दुनिया को SMS भेजते हैं, तुम यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम ना. वो स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर हर दिन मैं ऐसे ही करता था, बस आज भूल गया हूं सर. व्हाट? बोला यस सर, सच्ची बात बताऊं, आज तो मुझे मोबाइल बिल्कुल याद नहीं था. आई वाज सो फोकस्ड ऑन योर लेक्चर. मैंने कहा अच्छा. यस सर, आई रियली फॉरगॉट अबाउट माय मोबाइल. मैंने कहा या यू मीन टू से अदर्स डिजर्व पनिशमेंट. यस सर. यू मीन टू से अदर्स ने गलती की है. यस सर. मैंने कहा हां, ये तो परफेक्ट लॉजिकल है. मैंने कहा ऑल ऑफ यू पिक अप योर मोबाइल्स. सर हमने क्या गलती की. मैंने कहा पिक अप योर मोबाइल्स. सबने मोबाइल उठाया. मैंने कहा देखो, आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम. ये 1 मिनट में सेट द बेस्ट रिंगटोन दैट इज अवेलेबल इन योर सेट. आपके सेट में जो सबसे अच्छा रिंगटोन है उसको सेट करो. बोला सर. मैंने कहा सेट करो. सेट हो गया. बोला हां. मैंने कहा नाउ स्टार्ट प्लेइंग दिस रिंगटोन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट्स एट अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिकल सेशन. बहुत अच्छा सेशन हुआ. और जब ये बात हमारी डिसिप्लिन कमिटी को पता चली, तो टीचर्स आकर बोले, प्रोफेसर इज दिस द वे टू डील विद द स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स को खराब कर रहे हो. मैंने कहा खराब कर रहा हूं या अच्छा कर रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन एक फिलॉसफी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं कि आजकल के बच्चों को भाषण सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता है. है ना, एडवाइस मोड पर आए वो स्विच ऑफ हो जाते हैं. बोला सर ऐसे आप कैसे कह सकते हो. मैंने कहा चलो, यू आर ऑल्सो एन इंजीनियरिंग प्रोफेसर, आपको थोड़ी टेक्निकल भाषा में समझाता हूं. मैंने कहा देखो, दिस लाइट्स आर सो सूदिंग, मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे आंखों में टॉर्च मारेगा तो मैं क्या करूंगा. मैं कहूंगा प्लीज बाबा टॉर्च को बंद करो, My senses are not able to withstand. उसी तरह जब व्यक्ति बहुत स्नेह और प्रेम से बोलता है ना, सामने वाले व्यक्ति सुनता है. लेकिन जैसे हम एडवाइस मोड में आए, गुस्सा करने लगे, इट इज लाइक पुटिंग अ टॉर्च ऑन टू द अदर पर्सन्स आईज, और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल विथस्टैंड नहीं करता है. इसे जब मम्मी को गुस्सा आता है और जैसे ही मम्मी का भाषण स्टार्ट होता है, वो छोटू इतना इंटेलिजेंट होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है और 5 मिनट का एक आंख खोल के देखेगा, मामा आपका भाषण खत्म हुआ क्या. फायदा क्या हुआ, बस हमारा बीपी बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ. इसे प्लीज वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर. यस, थ्रू द टेक्निक ऑफ राजयोग मेडिटेशन. अब आपके जीवन में एंगर कम हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा. वेरी सिंपल इज, हाँ, मास्टर द आर्ट ऑफ स्माइलिंग. नेवर फ्राउन इवन व्हेन यू आर सैड, बिकॉज यू नेवर नो हु इज फॉलिंग इन लव विथ योर स्माइल. एक कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन. तो जब भी आप किसी से मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलो. आप कहेंगे स्वामी भाई यही तो प्रॉब्लम है, कैसे मुस्कुराएं, हैं, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. तो मैं कह रहा जरूर जरूर मुस्कुराओ. तो आजकल मैंने देखा बॉम्बे में बहुत सारे लोग ना सुबह 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 उठकर दे गो एंड जॉइन लाफ्टर क्लब्स, और वहां जाकर बहुत मुस्कुराते, बहुत हंसते. अब ऑफिस में तो हंस सकते नहीं है, घर में तो बिल्कुल मार्जिन नहीं है, और स्वामी भाई कहते हैं मुस्कुराओ हंसो, तो चलो यार लाफ्टर क्लब्स में जाकर हंसते. इट्स अ गुड एक्सरसाइज, आई रियली अप्रिशिएट दैट एक्सरसाइज. इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स. लेकिन स्माइल शुड कम फ्रॉम डीप विद इन द हार्ट. और यहां मैं कह रहा हूं कि हमारी पर्सनालिटी ना रमणीक होनी चाहिए. और हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस. वी शुड हैव अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी. जहां गंभीर होना गंभीर होइए, लेकिन जहां रमणीकता आनी चाहिए वहां ऑटोमेटिकली वी शुड बी ह्यूमरस. हम देखते हैं काफी भाई बहन इतने सीरियस हो जाते हैं, माई गॉड, उनको देखकर फिर तनाव आने लगता है. बट वी शुड बी ह्यूमरस, वी शुड बी रमणीक. टू जस्ट आई विल टेल यू अ वेरी वंडरफुल जोक. आपको भले ये जोक समझ में आया है ये नहीं आया, बहुत जोर से हंसना ताकि सभी लोग आपस आजू बाजू वाले लोग फील करें कि भाई हाँ आप इंटेलिजेंट, आपको जोक समझ में आ रही है. ठीक है, तो बहुत जोर से हंसना एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी मुस्कुराने की. एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, द जापानीज प्रेसिडेंट वेंट ऑन अ ट्रिप टू अमेरिका. तो जाने के पहले उनके ऑफिसर्स ने जापानीज प्रेसिडेंट को कहा, सर आप अमेरिका पहली बार जा रहे हैं. बोला यस. बोला सर आपको अगर बहुत अच्छा इंप्रेशन देना है, हाउ अबाउट कम्युनिकेटिंग विद अमेरिकन प्रेसिडेंट इंग्लिश सर? तो जापानीज प्रेसिडेंट का, माई गॉड मुझे इंग्लिश पता ही नहीं है। सर आपने सुना नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठेगा। बाबा आई डू नॉट नो इंग्लिश। तो उनके ऑफिसर्स ने कहा सर देश के खातिर एक दो सेंटेंसेस रट सकते ना? बोला हां देश के खातिर रट सकता हूं। बोलो क्या रटना है? बोला वेरी सिंपल सर, जैसे आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलेंगे जस्ट आस्क अ लॉजिकल क्वेश्चन, हाउ आर यू? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जवाब देंगे आई एम फाइन, इन टर्न वो क्वेश्चन पूछेंगे हाउ आर यू, तब आप जवाब देना सेम एज यू सर। सर एक दो सेंटेंस रट सकते ना? बोला जरूर रटेंगे। अब रटने लगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, पहली बार इंग्लिश बोल रहे, बहुत तनाव भी हो रहा था, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। As his motorcade was traveling towards the White House, how are you? How are you? How are you? White House में entry की, उन्होंने देखा American president आ रहे, how are you? How are you? और जैसे American president सामने पहुंचे, हमारे Japanese president का तनाव इतना बढ़ गया कि हमारे Japanese president instead of asking how are you, पूछ बैठे who are you? American president ने कहा वाह, मेरे अमेरिका में आके, मेरे White House में आकर मुझसे पूछता who are you? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा कि मैं इसको ठीक तरह सुन नहीं पाया हूं। ही गेव अ फेस लैंग्वेज और अ बॉडी लैंग्वेज दैट आई डिडंट गेट यू प्रॉपरली। फेस लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज किसी को भी समझ में आ जाती है। जापानीज प्रेसिडेंट गॉट द क्लू, बहुत जोर से चिल्लाकर पूछा हु आर यू? दैट वॉज द लिमिट ऑफ इंडिसेंसी एट दैट टाइम। मिस्टर बिल क्लिंटन वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसने भी बहुत जोर से चिल्लाकर कहा आई एम द हस्बैंड ऑफ हिलरी क्लिंटन, हु आर यू? एंड द जापानीज प्रेसिडेंट रिप्लाइड सेम एज यू सर। और फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी है कि आप समझ होकर बहुत जोर से हंसे। और यहां पे जो भी मेरे बॉम्बे के भाई बहन यहां पर आए हैं जिन्होंने बहुत जोर से हंसे, यू हैव डन ग्रेट सोशल सर्विस टू योर हार्ट। आप में से कितनों ने नॉर्मन कजिन्स का नाम सुना होगा? NORMAN COUSINS, नॉर्मन कजिन्स। नॉर्मन कजिन्स ही वॉज एडिटर ऑफ द सैटरडे रिव्यू फॉर ओवर 35 ईयर्स। नॉर्मन कजिन्स को एक ऐसा डिजीज आ गया जिसका कोई क्योर ही नहीं था। तो डॉक्टर्स ने कहा नॉर्मन यू विल नॉट सर्वाइव। तो उसने कहा डॉक्टर्स अगर आप कहते ही हूं कि मैं मरने वाला हूं तो क्यों ना मैं हंसते हंसते मरूं। एंड ही चेक्ड आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल, अपने घर गए, एवरीडे वॉच कॉमेडीज लाइक टॉम एंड जेरी, चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी, क्योंकि मरने के एक मिनट पहले मुझे बहुत हंसकर मरना है। एंड नॉर्मन कजिन्स रिटर्न टू फुल टाइम वर्क। नॉर्मन कजिन्स ने दो किताब लिखी है फॉर द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड। वन इज एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, नंबर टू इज द हीलिंग हार्ट। हीलिंग हार्ट, आप गूगल सर्च इंजन में भी नॉर्मन कजिन्स टाइप करते साथ यू विल गेट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पेजेस। नॉर्मन कजिन्स कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसना बहुत बहुत जरूरी है। नॉर्मन कजिन्स कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता है, हंसता है, और हम बड़े कितनी बार हंसते हैं? सर उसके लिए हमें इतनी दूर बॉम्बे से ज्ञान सरोवर आना पड़ा मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए। लेकिन यहां जो आपको वर्षा मिल रहा है मुस्कुराने का, अब हमेशा अपने पास रखिए और हमेशा जहां पे भी जा रहे हैं मुस्कुराते हुए मिलिए। अच्छा, अब बॉम्बे जाने तक आप मुस्कुराने की ये जो वर्षा कैसे लेकर जाएं, उसके लिए एक बहुत सुंदर टेक्निक हमारे विद्यालय में देखा गया है और वो है कैन वी चेंज आवर ब्लड ग्रुप टू बी पॉजिटिव। फ्रेंड्स हमारे विद्यालय में ये रिसर्च देखा गया कि जिन लोगों के ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हैं दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। आप में से कितने भाई बहन जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, हाथ उठा। हाँ सामने बैठ के मुस्कुरा रहे दिखाई दे रहा। हाँ करण अर्जुन मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अच्छा हमारे कितने भाई बहने हैं जो जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है, हाथ उठाइए। हाँ हाँ, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यहां पर एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, तो आप दो दिन एक्सटेंड कर दीजिए और वहां पर एडमिट हो जाइए एंड गो फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। और आप महसूस करेंगे कि जैसे आप ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव कर रहे हैं तो सोते हुए भी आप मुस्कुराते रहेंगे। दिस अ वेरी वंडरफुल रिसर्च। तो आप हो सके ना तो बॉम्बे फोन करके दो दिन एक्सटेंड करिए, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय बी पॉजिटिव? नथिंग टू डू विद अ ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव इन अ लाइफ। तो जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है, हाँ वो राहत की श्वास ले रहे, चलो मार्जिन तो है। और जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है सोने पर सुहागा। और हम आई एम ए बी पॉजिटिव, वन स्टेप अहेड। आत्मा बाबा प्लस पॉजिटिव, राइट? ओके, ए बी पॉजिटिव। मैं इसको हमेशा कहता हूं आत्मा कैसी पॉजिटिव, ए फॉर आत्मा, जब वो बाबा की कनेक्टिविटी में आएगा, बी फॉर बाबा परिचय मिला ना, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम पॉजिटिव. दैट्स व्हाट आई कॉल इट. अब हाउ टू बी एवर पॉजिटिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत सुंदर उसमें आर्टिकल दिखाई दिया जहां पे एक लेडी रिपोर्टर को ना बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में बुलाया गया. जब वो वहां पे गए तो देखे छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, और कुछ समय के बाद जब सेकेंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो रिपोर्टर ने देखा कि 10 वर्ष के बच्चे को एक व्यक्ति स्टेज पर लेकर जा रहे हैं टू रिसीव द सेकेंड प्राइज. तो रिपोर्टर को आश्चर्य हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय. जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उसके पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग्स? तो बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड. बोला, आई एम वेरी सॉरी, कैसे हुआ? बोला, मैडम एक एक्सीडेंट में इसको काटना पड़ा. तो रिपोर्टर ने पूछा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी उम्र के बच्चे कितना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष का बच्चा हु स्टेज इन मलाड मुंबई, उनका बहुत क्लासिक जवाब था. जब उन्होंने जवाब दिया, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी, और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है. इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट. मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो बच्ची है ना, शी इज सफरिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर. इंटरनेट से हमने इसको डाउनलोड किया, लेकिन मुखौटा पहने हैं मुस्कुराहट का. आज मेरे अपने लाइफ में भी मुझे अगर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है तो मालूम मैं क्या करता हूं, मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स को साइड में रखकर परेल में जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल वहां जाता हूं, वहां छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं. ऐसे बच्चे जो कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं, लेकिन विश्वास उनको सुप्रीम सर्जन पर, विश्वास उनको डॉक्टर्स पर, विश्वास उनको मेडिसिन पर. और उनको देखकर मुझे बस यही प्रेरणा मिलती है कि अगर ये बच्चे फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर अगर इतने पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, हे प्रोफेसर स्वामीनाथन, तुम तो परफेक्टली नॉर्मल हो, यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू बी सैड इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड. एक सेकेंड के लिए भी हमें दुख की लहर आनी नहीं चाहिए, एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पांच बातें अगर किसी में आ गई, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ फेस इन द क्राउड. सोशल हेल्थ पर कौन कौन सी पांच बातें हैं? नंबर वन, अनकंडीशनल लव. नंबर टू, अप्रिसिएशन. नंबर थ्री, मैनेज योर एंगर. नंबर फोर्थ, ऑलवेज स्माइलिंग. एंड नंबर फिफ्थ इज ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव करा लो, राइट. नाउ द लास्ट इज क्वालिटी ऑफ विजन. फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैंने बताया, विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन अभी मैं आपको तीन परम सत्य, आध्यात्मिक सत्य, जो मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में करीब 12 वर्ष पहले सीखा, सिंपल एब्सोल्यूट ट्रूथ. बस हमेशा मैं अपने आप से बातें करता हूं कि इतने वर्ष, मुझे 12 वर्ष, लेकिन उसके पहले भी तो मेरी 25-30 वर्ष चली गई, ये आध्यात्मिक सत्य मुझे पहले क्यों नहीं पता चला. वेरी सिंपल एब्सोल्यूट ट्रूथ. आप इस पर जरूर जरूर विचार करना, इस पर डिबेट हो ही नहीं सकता है. नो कॉन्ट्रोवर्सीज, नो डिबेट्स एट ऑल. नंबर वन सत्य है, मैं इस संसार में आया हूं तो मुझे जरूर एक दिन वापस जाना है ना. मैं संसार में आया हूं, इस धरती पर आया हूं तो मुझे वापस जाना है. बॉम्बे में ना लोगों को रिटर्न टिकट लेने की बहुत आदत होती है, बोरीवली रिटर्न, दादर रिटर्न, गोरेगांव रिटर्न. लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते हम ये भूल जाते हैं कि हम सबके पास रिटर्न टिकट है. आप सबने संगीता बहन से पूछा होगा, अच्छा आने का तो ठीक है, जाने का कौन सा कोच है प्लीज बताइए. हाँ, S327 कंफर्म, चलो वेरी गुड, वापस कंफर्म बर्थ तो हो गई है. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमको भी एक दिन वापस जाना है. इट्स एन एब्सोल्यूट रियलिटी. दूसरी रियलिटी है, हम इस धरती पर अकेले आए हैं, अकेले हमें वापस जाना है. और तीसरा परम सत्य है, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हमें वापस जाना है. प्रश्न उठता है, ये धरती पर आए हैं, हमें वापस जाना है, ये आने और जाने वाली सत्ता कौन सी है, जो आज आपने सुबह के लेक्चर में सुना होगा. सपोज एक व्यक्ति रस्ते से चल के जा रहा और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आते, डॉक्टर्स कहते पेशेंट को जल्दी लेकर आओ, और पेशेंट पर ऑपरेट करते, अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन ब्रॉट लेट, तो उनकी डेथ हो जाती है. तो डॉक्टर्स अपने वार्ड बॉयज को बुलाकर कहते टेक द बॉडी आउट. आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड अ बॉडी. सपोज आपको समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो आप कहोगे कि मृत्यु के बाद मैं अपने आंखों को डोनेट करूंगा, मैं अपने हार्ट को डोनेट करूंगा, मैं अपने किडनी को डोनेट करूंगा. आप एक विल पेपर लिखते हो और गुजर जाते हो. इमीडिएटली दैट्स अ बायो कंपैटिबल ह्यूमन सिस्टम. यहां के यहां देख नहीं पाती, लेकिन अगर आपने दूसरे शरीर में फिट किया तो देख पाती है. हार्ट यहां कोई काम नहीं कर रहा, वहां फिट करो तो काम करता है. किडनी डजंट डू एनीथिंग, या किडनी को वहां फिट करो, इट डज ऑल द फंक्शंस ऑफ अ किडनी. जैसे गाड़ी की टायर, एक टायर को निकालो दूसरे टायर में फिट कर दो, राइट काम करता है. लेकिन यहां क्यों नहीं काम करता है? आयरन बॉक्स होती ना गर्म, आप टच करते साथ आप अपना हाथ निकाल दोगे. वाई? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग सिग्नल टू माई ब्रेन. लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उस तक नहीं करती है. और हम जो भारत के भाई बहने यहां बैठे हैं ना, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि डॉक्टर्स द वेस्ट, जो फॉरेन के डॉक्टर्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में बहुत वर्षों पहले लिखा गया है. और ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में वो आत्म अनुभूति की जाती है. दैट इज द रियल पर्सनैलिटी. एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के लिए कितना टाइम देते हैं, लेकिन द इनर पर्सनैलिटी, और वो है स्वयं का परिचय. गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलती है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाती है. उसी तरह शरीर भी एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन इसका ड्राइवर है आत्मा, सोल, रूह या एनर्जी. जब ये आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, देन इट इज कॉल्ड एज जीव आत्मा और ह्यूमन बीइंग. आज प्रॉब्लम संसार के साथ क्या हो रहा है, गाड़ी की बहुत मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बैठा ड्राइवर उसको हम ध्यान ही नहीं देते. सो द इनर पर्सनैलिटी, द इनर ब्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और आज समाज में जो सबसे बड़ा तनाव या डर मालूम किस बात का है, द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय. मुझे याद है मैं इंडियन एयरफोर्स को एक बार लेक्चर ले जा रहा था, तो उसके जो चीफ, जब हम ऑडिटोरियम में जाने के पहले उन्होंने मुझसे पूछा, प्रोफेसर आपको पता है आप किसको लेक्चर देने वाले हो? मैंने कहा यस. बोला ये ऐसे पायलट्स हैं जो MiG-21 MiG-27 उड़ाते हैं, और उनको सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का भय, आप इस पर जरूर फोकस करना. मैंने कहा मैं जरूर कोशिश करता हूं. और जब मैं आत्मा का ज्ञान पर आया तो मैंने ये बताया उनको, आत्मा अजय, अमर, अविनाशी है. और फिर सभी से मैंने कहा, पूछा कि भाई सबसे बड़ा डर किस बात का होता है, तो सभी ने कहा मृत्यु का भय. एक पायलट खड़े होकर कहते, नो प्रोफेसर मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है. तो मैंने कहा सर आप जो बोल रहे हो ना एकदम राइट बोल रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने क्लोज वंस, परिवारजनों का, बच्चों का, उनका फियर ऑफ डेथ होता है. यस और नो? वो सोचने लगे. इमीडिएटली उनकी वाइफ जो साइड में बैठे थे एकदम खड़े होकर कहते, तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम वापस नहीं उतरते हो, हैव यू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इमोशंस? है ना, हमें अपनी मृत्यु का भय इतना नहीं होता है, लेकिन अपने नजदीक लोगों का मृत्यु का भय जरूर होता है. लेकिन जैसे हमें अगर पता चलता है कि आत्मा अजय, अमर, अविनाशी है, कुछ समय तक हम पाठ बजा रहे हैं, जब तक पाठ बजा रहे हैं बहुत खुशी से बजाए, फिर आत्मा एक पाठ छोड़कर चली जाएगी, या तो मैं पहले जाऊंगा नहीं तो वो पहले जाएंगे, एज पर ड्रामा प्लान अनुसार, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे याद है करीब 2 महीने पहले मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेक्चर ले रहा था इंडो बांग्ला बॉर्डर में, तो उनके जो आईजी, बीएसएफ के आईजी तिवारी साहब फ्रॉम यूपी, वो भी बैठे थे, सारे जवान भी बैठे थे, उनके ऑफिसर्स भी बैठे थे. जब मैंने आत्मा के बारे में कहा तो इमीडिएटली एक जवान ने खड़े होकर कहा, सर प्लीज आप बता सकते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे योनि में भी जाती है, कौन से योनि में जाती है, कैसे जाती है? तो मैं तो मुस्कुराने लगा. तो जो आईजी साहब, तिवारी साहब बैठे थे, वो खड़े होकर कहते, नो प्रोफेसर ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहे ना बहुत लॉजिकल प्रश्न है, आप उनका अगर पूरा वर्क प्रोफाइल अगर देखेंगे तो शायद ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे आपको समझ में आएगा. तो मैंने कहा प्लीज बताइए उनका क्या जॉब प्रोफाइल है. बोला सर ये जो बीएसएफ के जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो बांग्ला बॉर्डर इज अ वेरी स्लशी एरिया, और उनको एक ही जगह करीब 8 से 12 घंटे खड़े होना पड़ता है, और वो चारों तरफ वो मॉस्किटोस, लीचर्स, ये वो कीड़े मकोड़े जो उनके ऊपर चढ़ते रहते हैं उनको वो हटाते रहते हैं 8 से 12 घंटा. और उनके मन में यही विचार चलता है, पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म तो नहीं किए जिसके कारण बीएसएफ में भर्ती मिल रही है, इस जन्म में भी कोई अच्छे कर्म तो नहीं कर रहे हैं, पत्नी ऐसे वैसे जन्म ले लेंगे तो क्या हालत होगी, तो प्लीज आप इसका स्वरूप बताना. तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा है, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं कि आत्मा जो पर्सनैलिटी है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में ही, ह्यूमन बीइंग में ही जन्म लेती है, कभी भी जानवर योनि में जन्म नहीं लेती है. और मैंने कहा मेरे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत रिसर्च के बारे में कहता है, रिसर्च लाइक एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर केनेथ ट्रिंग, डॉक्टर ब्रायन वॉइस. खुशी की बात है इंडिया में एक इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च स्टार्ट किया है, दैट इज इन बैंगलोर, निम हैम्स बैंगलोर. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसर्जरी, और उनका रिसर्च पेपर्स, तीन रिसर्च पेपर्स मेरे हाथ में आया है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके सामने रख रहा हूं। और उनका रिसर्च ये नहीं कहता है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर चली जाती है, वो तो बहुत आजकल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो रहा है, लेकिन निमहांस का रिसर्च ये था कि पिछले जन्म में भी ट्विंस जुड़वे और इस जन्म में भी ट्विंस, ऐसे तीन केसेस पर उन्होंने साइंटिफिकली गेसेट किया गया है। उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये पता लगाया कि पिछले जन्म में भी वो जुड़वे बच्चे और इस जन्म में भी जुड़वे बच्चे। तो मैंने वो जवान को कहा कि इतना रिसर्च पर तो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप ध्यान से इसको सुनना। जैसे मैंने उनको कहा कि अगर आप है ना बाइक बजाज सिटी 100 बहुत अच्छी तरह चलाना चाहते हैं, आपको मालूम है, यस यू आर एन एक्सपर्ट ड्राइवर देयर, और अगर मैं आपको अपनी मारुति 800 लाकर कहूंगा और कहूंगा कि प्लीज मेरी मारुति 800 चलाओ, तो आप क्या चला पाएंगे? क्या नहीं चला पाएंगे? मैं कहूंगा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर है, इसमें भी क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर है। नहीं, आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो बजाज सिटी 100 का, यू कैन नॉट ड्राइव मारुति 800। मारुति 800 के ड्राइवर को उठाकर हम लोकल ट्रेन के कैबिन में नहीं बिठा सकते, इट डजंट मैच एट ऑल। एक दिन आप फ्लाइट में बैठ रहे हो, तो जैसे आप फ्लाइट में बैठ रहे हो तो एयर होस्टेस आकर आपको अनाउंस करेंगी, आप सभी का इस फ्लाइट में हार्दिक स्वागत है, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें सेवा करने का चांस दिया है, और फ्रेंड्स हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि आज की जो फ्लाइट है बहुत बहुत यूनिक फ्लाइट है, क्योंकि आज के जो हमारे जो फ्लाइट के जो पायलट है वो बहुत बहुत एक्सपीरियंस अनुभवी ट्रेन ड्राइवर है। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगे मैडम प्लीज एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं धरती को टच करके आता हूं, और अगर आपको धरती को टच करने की परमिशन देंगे आप इतने जोर से भागेंगे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इट डजंट जेल माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बजाज सिटी 100 के जो ड्राइवर हैं उसको हम होंडा यूनिकॉर्न में भी बिठा दें, मारुति 800 के ड्राइवर को थोड़ा ट्रेनिंग देंगे तो मर्सिडीज बेंज भी चला पाएगा, बॉम्बे के लोकल ट्रेन के ड्राइवर को थोड़ा ट्रेनिंग देंगे तो शताब्दी भी चला सकता है, जेट एयरवेज के पायलट को थोड़ा ट्रेनिंग देंगे तो MiG-21 भी चला सकता है, बट यू कैनॉट स्वैप इट ऑफ, नहीं हो सकता है। उसी तरह यह आत्मारूपी पर्सनालिटी किसकी जो गाड़ी है वो ये ह्यूमन बींग्स है, इट कैन गो इन टू मेल फीमेल, बहन के शरीर में आ सकते हैं, भाई के शरीर, छोटा बड़ा, काला गोरा, इट कैन ऑल हैपन, लेकिन प्लीज ये आत्मारूपी ड्राइवर को अगर आप कीड़े मकोड़े में बिठाना भी चाहेंगे तो बिल्कुल बैठ नहीं सकता। और जैसे ही मैंने बात कही तो जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स, इस जन्म का तो तनाव खत्म किया, अगले जन्म का भी तनाव खत्म कर दिया, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यस, नाउ द लास्ट स्लाइड है, अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी पर्सनालिटी बनानी है तो आपको क्या करना होगा? नंबर वन, अच्छे किताबें पढ़िए, और ये जो मैं रिसर्च की बातें बता रहा हूं आप जरूर पढ़ सकते हैं। दो तीन किताब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये दो तीन किताब जरूर पढ़िए, है ना, किताबें अच्छे पढ़ने से हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक किताब जो मैं रिकमेंड करता हूं, दैट इज रिटन बाय रॉबिन शर्मा, और किताब का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, है ना। मैडम आपने पढ़ा है, कैसा लगा किताब? बहुत अच्छी लगी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं एक दो बातें बताता हूं, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, वो भी बहुत अच्छी किताब है। पेज नंबर 44 में रॉबिन शर्मा कहते हैं, जो लोग अच्छे पर्सनालिटी होते हैं, क्वालिटी पर्सनालिटी होते हैं, दे गेट अप अर्ली, सुबह उठते हैं। और रॉबिन शर्मा इस किताब में लिखते हैं, ज्वाइन द 5 o'clock क्लब, 5 बजे आप उठ सकते हैं तो क्वालिटी पर्सनालिटी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं। और हमारे यहां के बीके के भाई बहने जो ये ज्ञान सरोवर में रहते हैं, उनका मॉर्निंग अलार्म देखना, दे गेट अप एट 3 o'clock, बॉम्बे के भाई बहने दे गेट अप एट 3:30। स्वामी भाई इतने क्वालिटी नहीं बने तो मेरे मोबाइल में हमेशा अलार्म रहता है 3:55 AM। यस, मेरा जो मोबाइल, एवरी टाइम इट इज 3:55 AM, सुबह उठना, जो लोग सुबह उठ सकते हैं। कहते रॉबिन शर्मा इस किताब में लिखते हैं, द बैटल ऑफ द डे बिगिंस विद द बैटल ऑफ द बेड, सारी दिन की जो युद्ध हो ना वो शुरुआत होती है बेड से। हम 6 बजे का अलार्म रखते हैं, टक, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट में हम हार खा गए। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जब मैं यहां पर आया तो मैंने महसूस किया कितना सुबह उठते हैं, जिसको हम सुबह कहते हैं अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। पुराने दादा दादियां कहते थे ना, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, दैट्स द बेस्ट टाइम। आप 2-3 दिन यहां पर हो, आप रात को जल्दी सो जाना, 10:30 बजे तक आपका प्रोग्राम हो जाता है, ज्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, सो जाइए और सुबह 4 o'clock उठिए, और ये कैंपस के वातावरण के साइलेंस को अनुभव करिए, और ये 4 बजे आप ईश्वर के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो बॉम्बे में हमारी दिनचर्या ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आप यहां पर आए हैं ईश्वर के निमंत्रण से, तो जरूर इसका अनुभव करिए। एक बात ये कहते हैं, दूसरा रॉबिन शर्मा अपनी किताब में कहते हैं हफ्ते में 2 दिन उपवास जरूर करना चाहिए। आप लोग करते हैं तो आप लोग क्वालिटी पर्सनैलिटी है, अगर नहीं करते तो जरूर करिए। लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं भोजन का उपवास के बारे में नहीं कह रहे, रॉबिन शर्मा कहते हैं हफ्ते में 1 दिन टेलीविजन का उपवास कीजिए और दूसरे दिन न्यूज़पेपर का उपवास कीजिए। हमारी पर्सनालिटी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम देने वाली ये 2 सत्ता है, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, बस 1 दिन, मैं नहीं कहता, रॉबिन शर्मा कह रहा है। आप कहेंगे नहीं स्वामी भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं 1 दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे का उपवास कीजिए। और वो कौन सा 1 घंटा है, जब आप भोजन खा रहे हैं तब तो प्लीज वो टेलीविजन को स्विच ऑफ करिए। ईश्वर कहते हैं कि भगवान की याद में भोजन करना चाहिए, और हम वो हॉरर शोज है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो देखते देखते भोजन कर रहे हैं, क्या हालत होगी हमारी भोजन की, है ना। तो प्लीज 1 घंटा भोजन से जरूर जरूर बचना है। और आज हमारे घर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और वो रिमोट कंट्रोल। सारा युद्ध तो रिमोट कंट्रोल के कारण होता है ना। वो छोटू को कार्टून शो देखना है, लड़के को क्रिकेट मैच देखना है, भाई साहब को आज तक देखना है, और आपको घर घर की कहानी सुननी है, राइट। सारा युद्ध होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टेलीविजन की है। तो मैं बॉम्बे में एक लेक्चर ले रहा था, तो एक भाई साहब खड़े होकर कहते नो प्रोफेसर, ये रिमोट के कारण हमारे घर में बिल्कुल तनाव नहीं है। मैंने कहा ग्रेट, कैसे हुआ? बोला वेरी सिंपल, बॉम्बे में हमारा 3 बेडरूम हॉल किचन है और हमारे पास 4 टेलीविजन है। वेरी गुड, हर एक घर में बैठे रहो और देखते, हर एक रूम में बैठे रहो और देखते रहो। बट देर शुड बी कम्युनिकेशन। सोचने की बात, हम सबके पास मोबाइल है, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन परिवार के अंदर ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन है ना। बाप बेटे को SMS भेजता है, डिनर इज रेडी प्लीज कम डाउन, अरे दैट इमोशनल टच है ही नहीं। लेकिन कम्युनिकेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 1, अच्छे किताबें पढ़िए। तो एक तो रॉबिन शर्मा की किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं, रॉबिन शर्मा रिटर्न, द नेम ऑफ द ऑथर इज रॉबिन शर्मा, हु विल क्राई वेन यू विल डाई। मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया था, तो मुझे लगा जब मैं मरूंगा तो कौन रोने वाले हैं, तो मैंने कहा बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, लेकिन आई केम इन फॉर अ वेरी ग्रेट सरप्राइज जब रॉबिन शर्मा कहते हैं, एक सफल पर्सनालिटी का बैरोमीटर रॉबिन शर्मा इस किताब में देते हैं कि जब मैं जीवन के अंत में रहूंगा, व्हेन आई एम वेरी क्लोज टू डेथ, और मैं अगर मैंने अपने जीवन को रिवाइंड कर अपने जीवन में यह संकल्प लिया मेरा कौन सा जीवन, मैंने जीवन में क्या पाया क्या खोया, तो आई वॉज अ हॉरिबल पर्सनैलिटी। लेकिन जीवन के अंत में मैं अपनी पर्सनैलिटी को देखकर कहूंगा वाह मेरी पर्सनैलिटी, वाह मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह जिया है, then that is a successful personality. That is what Robin Sharma says. अच्छा दूसरी किताब जो मैं बहुत रिसर्च के बारे में कह रहा हूं, बहुत बहुत रिसर्च, जो भी आप अगले 2-3 राज्यों के सत्र में देखेंगे तो आप हमेशा आपकी लॉजिकल बुद्धि साइंटिफिक बुद्धि उसका प्रूफ मांगेगी, उसका प्रूफ बहुत अच्छी तरह बाहर के लोगों ने प्रूफ दिया है। उसके लिए मैं किताब रिकमेंड करता हूं, रिटर्न बाय आदरणीय BK जगदीश भाई जी, द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो सारा आत्मा का रिसर्च जो बाहर वालों ने किया उसका पूरा डाटा लिखा हुआ है और अपने आध्यात्मिकता के साथ कनेक्ट किया है। जगदीश भाई जी आपको हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट से मिलेगा, द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, ये किताब जरूर आप लेना। और तीसरी किताब एक गिफ्ट मैं आपको देना चाहूंगा, और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, हमारे जो फाउंडर फादर है ना उनकी जीवन कहानी आप जरूर लेना। तो ये 3 किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं, हु विल क्राई वेन यू विल डाई, द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा और ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, आपको लिटरेचर डिपार्टमेंट से जरूर मिल जाएगी। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जरूर जरूर ये 3 किताबें पढ़ना। अगर बाई चांस आपने ये किताब नहीं पढ़ी और अगर बाई चांस आपकी डेथ हो गई तो आप स्वर्ग की तरफ जाएंगे तो ईश्वर आपको बीच में रोकेंगे और ईश्वर आपको पूछेंगे वो स्वामी भाई ने वो 3 किताब बोली आपने पढ़ाई की। अगर बाई चांस आपने कहा नहीं तो ईश्वर कहेंगे नीचे जाकर पढ़कर फिर वापस आओ, क्योंकि अगर आपने वो किताब पढ़ ली देन योर एंट्री टुवर्ड्स हेवन बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो अगर आपको स्वर्ग के गेट जल्दी आना है तो ये 3 किताब जरूर पढ़िए। आई जस्ट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स विथ यू, बस 2-3 मिनट लूंगा। अच्छे लोगों के संग में रहो, कहते सत्संग करो, जैसा संग वैसा रंग लग जाएगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में एक बहुत सुंदर सिस्टम है, या जो भी BK भाई बहने होते हैं हर दिन वो ईश्वर के संग में रहते हैं, हर दिन वो विद्यालय में आते हैं और हर दिन हम स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। ये बहुत वंडरफुल विधि मेरे ख्याल से यही आध्यात्मिक संस्था में मैंने देखे है। और तीसरा सबसे वंडरफुल बात, मेक गॉड योर क्वालिटी एडवाइजर। ईश्वर को हमेशा अपने संग में रखो। वो छोटा बच्चा होता ना, जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो बहुत खुश होता है, इधर उधर भागता है तो उसकी मम्मी भी पीछे पीछे भागती है, और अचानक वो मम्मी से भटक जाता है तो बच्चे की अवस्था क्या होगी? रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, और उस भीड़ में वो अपनी मम्मी को ढूंढता है, और अचानक दूर खड़े उसको मम्मी अपने दिख जाते हैं जो उसको ढूंढ रहे होते हैं। बच्चे की अवस्था क्या होगी? एक सेकेंड में सारा अंधकार तनाव खत्म, दौड़कर बच्चा जाएगा मम्मी से लिपट जाएगा और रोने लगेगा, खुशी के आंसू। देखो एक सेकेंड में वो चेंज हुआ, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा था ना मम्मी के साथ ना संपर्क में आया, संग का रंग लग गया। उसी तरह हम भी हमेशा उस परमात्मा के संग में रहे। मेक गॉड योर क्वालिटी एडवाइजर। छोटा बच्चा जब रोड क्रॉस करता है वो अकेला होता है तो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, लेकिन अगर उसके साथ उसका बाप होगा तो क्या करेगा? अपना हाथ पिता के हाथ में दे देगा, टोटली रिलैक्स, नाउ इट्स योर प्रॉब्लम टू टेक केयर ऑफ मी, राइट? उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में अकेले ट्रैवल मत करो, ईश्वर को साथ लेकर चलो। एक लास्ट बात बताकर मैं एंड करना चाहूंगा, ये मेरा अपना इस विद्यालय का अनुभव है। हमारे एक नेहरूल सेंटर में जहां पे मैं रहता हूं वहां पे दुर्गा सिंह राठौड़ भाई करके हैं, ही इज अ नेवी कमांडर, बहुत वर्षों से विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। एक दिन वो जब पहली बार नेहरूल में आए तो उनके साथ हम सेवा में जा रहे थे, तो वो गाड़ी चला रहे थे, मैं सामने बैठा, पीछे तीन बहनें थे। तो स्टार्ट करने के पहले दुर्गा भाई जी ने मुझसे कहा, स्वामी भाई चलें? हमने कहा चलो। बोला देखो सभी पहुंच गए? हमने कहा पहुंच गए। बोला कितने हैं? मैंने कहा पांच हैं। बोला फिर से गिनो कितने हैं? मैंने कहा पांच हैं। बोला ध्यान से देखो सभी पहुंच गए? मैंने कहा पांच है ना। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने हमसे कहा, ईश्वर को साथ नहीं लेकर चलोगे? मैंने कहा हाँ। फिर पूछा कितने हैं? तब तक मैं इंटेलिजेंट हो गया, मैंने कहा अभी हम छह जने हैं। बोला हाँ अभी गाड़ी चलाते हैं, अभी गाड़ी चलाते हैं ना। जिस तरह वियोग का अर्थ है बिछड़ना, योग का अर्थ है संबंध जोड़ना, एंड दैट इज वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट कहानी बताकर मैं एंड करता हूं। ये कहानी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने इस विद्यालय के साथ विद्यालय में ये कहानी सुनी है, और जितनी बार मैं सुनता हूं सुनाता हूं उतनी बार मुझे खुशी की महसूसता होती है। ये महाभारत के दृष्टांत से बताते हैं कि अर्जुन को सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करना था, और अगर अर्जुन वो नहीं करेगा तो अपना गांडीव रख देगा और अपने जीवन को त्याग करेगा। तो एक दिन पहले शाम का समय था, तो श्रीकृष्ण स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि चक्रव्यूह को भेद करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और श्रीकृष्ण को लगता था कि अर्जुन को शायद ना बहुत तनाव होगा, जाकर मैं उनको थोड़ा स्ट्रेस फ्री करके आता हूं। और जैसे ही श्रीकृष्ण अर्जुन के शिविर में आता है तो उनको बहुत आश्चर्य होता है यह देखकर कि अर्जुन अपने बेड में लेटा हुआ है, खर्राटे मार के सो रहा है। तो इमीडिएटली श्रीकृष्ण अर्जुन को बोलता है, अर्जुन उठ। तो अर्जुन उठता है, देखता श्रीकृष्ण सामने खड़ा है। तो श्रीकृष्ण पूछता है, अर्जुन तेरे को पता है कल सूर्यास्त के पहले तेरे को उसका वध करना है? यस मुझे पता है। फिर तू ऐसे खर्राटे मार के सो कैसे सकता है? एन ए वेरी क्लासिक रिप्लाई फॉर अर्जुन, जब वो जवाब देता है, जब भगवान मेरे लिए जागा हुआ है तो मैं सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। इफ गॉड इज अवेक फॉर मी व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, टू स्नोर इन पीस ब्लिस एंड हार्मनी। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ईश्वर का संग होना बहुत बहुत जरूरी है। तो लास्ट दो मिनट मैं आपका लेना चाहूंगा, सभी दो मिनट देंगे? हाँ क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, हाँ यस, इट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बहन जी का ये प्रश्न है कि आत्मा को मोक्ष कब मिलेगा। इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, आप एकदम राइट ट्रैक पर है, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल स्टूडेंट। आप बस मैं आपको कहूंगा, जस्ट बी पेशेंट फॉर जस्ट 48 आवर्स। 48 आवर्स यहां पर है ना, तो 48 आवर्स में आपको सिर्फ मोक्ष नहीं, मुक्ति और जीवन मुक्ति एक स्टेप अहेड आपको बताया जाएगा है। तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर 48 आवर्स ओनली, ठीक है? आपको बहुत अच्छी तरह ये मोक्ष के बारे में, उसके आगे के स्टेप के बारे में भी आपको यहीं पर बताया जाएगा, सारे राजयोग सत्र में आपको कवर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सो फ्रेंड्स हम लास्ट 2-3 मिनट वो ईश्वर का संग करने की कोशिश करेंगे। और क्या करना है, सभी स्ट्रेट बैठे, सभी स्ट्रेट बैठे। अच्छा, सभी अपना हाथ ऐसे रखें, कीप योर हैंड्स लाइक दिस। हाँ, अपने हाथों के भाग्य की रेखाओं को देखिए। हाँ, कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो आपको लाइफ में चाहिए सारा वो भाग्य आपके हाथों में है। ईश्वर को बहुत प्रेम से याद कीजिए और महसूस करिए कि उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके हाथों तक पहुंच रहे हैं।
और आपके जीवन में जो आशाएं हैं, जो लक्ष्य है, वो संपूर्ण और संपन्न हो रहा है। सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके हाथों में हैं। उसको रब करिए लाइक दिस। सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस सबसे पहले अपने आंखों में रखिए। हाँ, आपके आंखें जो हैं एकदम प्योर डिवाइन हो रहे हैं। सारे चेहरे को मसाज कीजिए और आपके चेहरे में वो लाली है ना, दिव्यता रूहानियत नजर आ रही है, ठीक है। और थोड़ी बहुत नींद होगी तो वो भी चली जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी गॉड। बस एक लास्ट एक्सरसाइज हमें करना है। एक बहुत अच्छा गीत बजेगा। आप सभी के पास एक पेपर है, एक पेपर निकालिए, लगा देंगे सामने दिस बॉक्स। हाँ, सभी के पास एक पेपर लीजिए और क्या करना है, राइट अ वेरी ब्यूटिफुल लव लेटर टू गॉड। आज ईश्वर को ना एक बहुत सुंदर लेटर लिखिए। अगर आपको लव लेटर लिखना नहीं आता है तो मैं बताता हूं, है ना। आई लव यू लिखिए गॉड को, बाबा आई लव यू। और फिर हाँ सामने रखिए, सामने रखिए, हाँ वहीं रखिए। थैंक्स राजेश भाई। हाँ, तो आप पूरा मैं बताता हूं। आप ईश्वर को लव लेटर लिखना, आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और ईश्वर को बहुत दिल से धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने आपको यहां बुलाया है। और विशेष तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप ये अपनी पर्सनालिटी को चेक करिए और आपके जीवन में, आपके पर्सनालिटी में अगर कोई भी कमी कमजोरी है, यानी अगर है तो, नहीं है तो डोंट वरी, है अगर है तो उस कमी कमजोरी को आप आज ईश्वर को अर्पण कर दीजिए और उसको बहुत प्रेम से, ये कमी कमजोरी मैं ईश्वर को दे रहा हूं क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, और उसको बहुत अच्छी तरह फोल्ड करके इस ईश्वर है ना यहां पर ईश्वर के बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। गीत बजने तक चलेगा, जब गीत खत्म हो जाएगा तब आप एक 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 करके यहां पर डाल देना। 12 वर्ष पहले मैंने ये किया था और उस समय मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी क्रोध, और उसको मैंने डाल दिया एंड आई फाउंड अ वेरी वेरी वंडरफुल इफेक्ट, राइट, ठीक है। तो आप ये करना और ईश्वर को दिल से धन्यवाद देकर यहां पे ड्रॉप कर देना। विद दैट पॉजिटिव नोट, आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स, और ईश्वर परमात्मा का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। हाँ, जोरदार तालियां बजाइए और फिर आपका, फिर से हम आगे रात के लेक्चर में आपसे मिलेंगे। ओम शांति।